चंद कमेंट है, थोड़े से ही हैं, इसको शेयर करके तो इंशाल्लाह आज का सबक शुरू करते हैं। शैतान रजीम, कल के सबक में से कुछ कमेंट्स हैं, इसको देखते हैं। ये लिखती हैं कि आज दूसरी सीढ़ी पर पांव रख दिया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी सीढ़ियां आसानी से तय करूं, और मुझे उम्मीद है कि 30 सीढ़ियां तय करने के बाद भी उस्ताज जी हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगी। 2015 में मेरी दूसरी बेटी इस कोर्स को ज्वाइन करेगी, इसके साथ मैं फिर कोर्स शुरू करूंगी। चले, अल्लाह ताला आपके इरादों को मैं आपको पक्का रखे। या अल्लाह तेरा कैसे शुक्र अदा करूं इतनी बेशुमार नेमतों का, ऐ रब हमें हमें शुक्र की और अच्छी खलूस इबादत की, तेरी और तेरे नबी की इताअत करूं, इस नबी की जिसने कितनी कुर्बानियां दी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कबूल हुई 4000 साल, या थोड़ा सा इसलाह कर ले, पूरे 4000 नहीं, 3000 और 4000 दोनों के अल्फाज आते हैं, तो बस आप ये कह सकते हैं कि 3 से 4000 लगे, 3000 है तो 3 से 4 है तो 4 है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस चीजें चूंकि हमें हिस्ट्री की बनी इसराइली किताबों से मिलती हैं, तो इसके ऊपर अगर आप मेरे मुंह से 4 सुने, फिर बाद में मैं आपको कहूँ कि 3 है, तो डोंट वरी, किसी और से आप 5 सुन लें, तो इस पर झगड़ा ना करें, ना इस पर कोई बात, ये जो होती है ये हमारी बात का असल मकसद नहीं होती, सिर्फ एक आप लोगों को रग़बत दिलाने के लिए ये बातें बताई जाती हैं। बहरहाल सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो गया कि मांगू, तुम मांगो मैं दूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, आज दिल की कैफियत का हाल मत पूछिए। चले, नहीं पूछते। आई मेक दुआ, अल्लाह गिव्स अस तौफीक टू फॉलो दिस कमेंट्स एंड बी ओबीडियंट टू हिम, मेक इट इजी फॉर अस जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड हिज सहाबास, आमीन। कितना बड़ा बात है, मैं कल सारा दिन अपने दिल पे इसका असर महसूस करती रही, और बाद में भी खुद से पूछती रही कि अगर हम सहाबा की जगह पे होते तो उस वक्त क्या करते। और आप देखिए कि नमाज की कैफियत एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें बंदा बहुत ज्यादा किसी की अमल दखल और उसकी तनसंद ही नहीं करता। अगर उस वक्त सहाबा का ये हाल था तो आप सोचिए जरा उसके बाद क्या हाल होगा। कितनी बड़ी बात है अगर हम सोचें कि जो नमाज की कैफियत में बदल जाते थे, तो फिर आम दिनों में, आम हालात में सोते जागते खाते पीते उनका दिल कैसा होगा। क्या आपने सोचा बाद में जाके इस बारे में कि कैसे किबले की तब्दीली के दौरान सहाबा का ईमान हुआ, और 100 बटा 100 नंबर तो मिले होंगे ना, एक भी मिसाल नहीं। मजे की बात देखिए कि मदीना के इर्द गिर्द बहुत मुनाफिक और इस किस्म के किस्से आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन जब किबले की तब्दीली हुई तो शुरू शुरू का दौर था, यहाँ से लगता है कि अभी वो सब लोग इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए थे जिन्हें बाद में रखने डाले। इसलिए कोई एक रिवायत भी नहीं हमें ऐसी दिखती कि जिससे ये पता चले कि फितना उठ गया, बस ये बातों का शोर उठा था और वो बातें जो थी बाद में चली गई। खैर, वो कहती है कि नायात को पहले भी कई अलग से पढ़ा, लेकिन आज दिमाग इनायतों से रोशन हो गया, एक एक लफ्ज समझ आ गया, बहुत लुत्फ़ पाया, बयान से बाहर है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कुरान, रसूल, नबी, आखरत है, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, या अल्लाह हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। मैं तो सोच रही थी आज बहुत सारे कमेंट्स होंगे आपके, लेकिन चंद कमेंट्स हैं। हाँ, चाहे जब ज्यादा महसूस करते हैं तो फिर बोलना पसंद नहीं करते। ये कहती हैं, क्या जानवर या कीड़े मकोड़े मरने पर मौत का फरिश्ता आता है कि नहीं आता? कुरान कहता है आता है, तो फिर आता है, ठीक है, मौत या क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह आएगी, इसमें जानवरों की मौत का तذکرہ भी आएगा, ठीक है। तो सारे सबक को, अगर पीछे वाले को अगर हम समअप करके आज के सबक पे चलें, तो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़े मकसद के साथ पैदा किया। जब उम्मत इस मकसद के साथ जिएगी तो उसके साथ जिंदगी में क्या मामलात होंगे, ये सारा आज का सबक है। इंशाल्लाह हम अपने सबक पे चलते हैं, तफसीर से इंशाल्लाह आगाज होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सबक का आगाज करेंगे आयत नंबर 152 से। आज के सबक का बुनियादी थीम क्या है? उम्मते बनने के तकाजे। पिछले सबक में हमने अल्लाह ताला की तरफ से एक ऑनर पाया, और वो क्या, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, के ओ मुसलमानों, हमने तुमको इसी तरह से उम्मते वसत बनाया जैसे कि तुमसे पहलों को बनाया था, अहले किताब को। आज के इस सबक में हम देखेंगे कि जब उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम को करने निकलेगी जिसका जिम्मा अल्लाह ताला ने उनके कंधों पर डाला, तो हालात पेश आएंगे। और थोड़ा सा आपको और अपने आप को साथ लेकर रखिए कि उम्मते वसत के बनने का हक अदा होता है इल्म के सीखने से। इस वक्त आपने अपने शऊर के साथ जो सफर इख्तियार किया है ना इल्म का, गोया के ये शहादते हक की गवाही देने का पहला मरहला है। जब एक इंसान इल्म का रास्ता इख्तियार करता है तो असल में वो इस चीज़ का इजहार करता है कि अब उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उस रहनुमाई की ज़रूरत है जो अल्लाह सुबहाना तआला ने नबी के ज़रिए नाजिल की। पहले मरहले पे वो खुद दीन को सीखता है, फिर दूसरे मरहले पे वो इस दीन पे अमल करना चाहता है, तीसरे मरहले में फिर इस दीन के ऊपर दूसरों को बुलाना चाहता है, और फिर आखिरी मरहले में उस रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर जम जाता है। इसी बात का इजहार हमें आज के इस पूरे से मिलेगा। आप देखेंगे कि आज का सबक आपको सब्र सिखाएगा, क्योंकि इल्म हासिल करते ही जिस चीज का सबसे ज्यादा तकाजा हमसे किया जाता है वो सब्र है, और जो तालिब इल्म सब्र करने की बजाय अपनी मनमानियां करना पसंद करते हैं तो कह लीजिए कि शहादत हक के वो तकाजे पूरे नहीं कर सकते। आइए आयत को शुरू करते हैं साथ ही, और इसी से ही बात शुरू होगी क्योंकि आज के पूरे सबक का एक ही थीम है, तो लिहाजा बुनियादी बात समझने के बाद हम इस काबिल हैं कि हम आयतों को शुरू करें। आयत 153, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, या अय्युहस्सलाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मदद तलब करो सबर और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। आपको याद होगा कि ये आयत पीछे भी गुजरी, वहां गुजरी थी बनी इसराइल के तनाजर में। अगर आपका शऊर खुलता जाए ना तो आप महसूस करेंगे कि पहले पारे में बिल तरतीब जो चीजें बनी इसराइल के टैक्स में आई थी, अब दूसरे पारे में वही चीजें उम्मते मुस्लिमा के तनाजर में आएंगी। वहां आपको यह गालिबन बताया गया था कि वो आयतें जहां ये सबर की बात बनी इसराइल के साथ आई थी वहां 7 आयतें थी, वो बिल्कुल उसी तरह से थी जैसे आज उम्मते मुस्लिमा के लिए सूरत फातिहा की 7 आयतें। तो उनमें से बुनियादी चीज क्या थी कि या अय्युन्नास बिस्सब्री वस्सलात, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सबर के साथ मदद मांगो। 19वां रुकू जहां से शुरू हुआ है और अब आगे तक सूरत के अख्तिताम तक आप देखेंगे कि बराहे रास्त उम्मते मुस्लिमा से खिताब है, और मकसद बता दिया आयत 141 में कि लि तकून शुहदा अलन्नासी व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, कि तुम्हारा इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद दूसरों को इस दीन की दावत देना है, इस दुनिया में अपने इल्म से अपने और अपनी जुबान से इस्लाम की गवाहियां देते जाओ, और इस रास्ते में जो मुश्किल आए उस पे इन्नल्लज़ीना, यहाँ खास तौर पे उन मुश्किलात पे सब्र करने का हुक्म है जो दीन के रास्ते में। सब्र का जिक्र कुरान में बहुत जगह पढ़ेंगे, बल्कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि पूरे का पूरा दीन ही सब्र है तो आपको इस बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। सब्र क्या है? खुद को रोकना, पत्थर रखना दिल पे। लफ्ज़ी वज़ाहत में आपको बताया गया कि कश्ती के किनारे को बैलेंस करने के लिए वहां जो पत्थर रखा जाता है उसको सब्र कहते हैं, सबरा। तो आप देखेंगे कि फिर सब्र के रोक लेना, टू स्टॉप मानो में। सबसे पहला सब्र के दिल के अंदर नाराजगी ना आए अल्लाह पे। किसी मामले में इंसान को कोई जिंदगी की छोटी या बड़ी नागवारी दरपेश आए, किसी की मौत की सूरत में, कोई नहीं चाहता कि उसका प्यारा मरे, किसी दुनियावी नुकसान की सूरत में, बेटा मांगा बेटी हो गई, शादी चाही शादी नहीं हो रही, दौलत मांगी गुर्बत आ गई, अपना घर चाहा नहीं मिला, बड़ा घर मांगते रहे छोटा मिला, 1001 प्रॉब्लम्स लिख लें। इन सब हालात पे सब्र का पहला दर्जा क्या होता है कि दिल में शिकवा ना है, ला शिकवा तफीहा, जमील कहते हैं। आप इंशाल्लाह सूरत यूसुफ में पढ़ेंगे कि फसब जमील। तो सब्र का पहला दर्जा है कि बंदा अपने दिल में अल्लाह से राजी रहे। बाज दफा जुबान से चुगलियां और गीबतें और शिकवे होते हैं, लेकिन इससे पहले के मरहले में दिल में नाराजगी होती है। कुछ लोग अल्लाह से रूठे रूठे रहते हैं, मैं नहीं बोलती तो ना बोलो, मेरा ये ले लिया तो फिर मैं क्या करूं। यानी दिल को खुश रखना, अगर आप इस एंगल को लिख लेना तो सबर का पहला एंगल आपको क्या मिलता है, रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बिल इस्लामी दीना, मैं अपने रब के रब होने पे राजी हूँ। जब वो रब है तो जो करेगा वो ठीक करेगा। ए रब जो आखे ठीक आखे, ए रब जो आखे तू ठीक आखे। बंदा रब के फैसलों पे खुशियां मनाए, हु केयर्स कैसा क्यों हुआ, कैसा क्यों हुआ, मेरे रब ने मेरे लिए ये डिसाइड किया कि ये नुकसान मुझे पहुंचे, बहुत आला दर्जे की बात है। इसी से फिर अल्लाह से खुश होना, अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी होना आता है। इसी से एक बंदा फिर महसूस करता है कि उसका रब उसकी जिंदगी में कितना अहम किरदार अदा करता है। फिर ये नहीं कह सकता कि मेरे ही साथ क्यों, आखिर कब तक, मैंने क्या बिगाड़ा, हाय फुला 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 फुला, चाहे दीन के रास्ते में तकलीफें आए या दुनिया के। और तकलीफों पे तो सब्र बहुत आसान है, बहुत आसान है, लोग कर लेते हैं। क्यों? कि आज सब्र करेंगे कल उसका फल मिलेगा। मसलन खाना खाने का वक्त भी नहीं मिल रहा दुकानदार को और गाहक पे गाहक आए जा रहे हैं, भूख तो लगी भी है, लेकिन सब्र कर रहे क्यों, कि हाथ में रास्ते वापसी पे बहुत सारे नोट होंगे। यहाँ से सुबह फजर के से पहले निकल के 2 घंटे का सफर करके जाना कोई आसान काम है? एक बस बदलनी, फिर उससे निकलना, फिर कुछ वॉक करना, फिर कुछ ट्रेन लेनी, फिर जाना, क्या बच्चे सब्र नहीं करते? कितना मुश्किल है बिस्तर छोड़ना, वीकेंड पे ही देखें 2 बजे से पहले आंख ही ना खुले, सब्र करते हैं ना, लेकिन वो सब्र आसान लगता है। क्यों? कि उसका नतीजा बाद में डिग्री की सूरत में, कैरियर की सूरत में। रात की ड्यूटियां करना भी आसान काम है, फितरत के खिलाफ जाके कोई बंदा रात को जागता है, चाहे जितना मर्जी दिन को सो ले, रात रात है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, रात तो छुपाने वाली है लेकिन लोग करते हैं, क्योंकि डबल ड्यूटी है, डबल फायदा होगा, डबल पे मिलेगी। वीकेंड सबको अच्छे लगते हैं, घर में लोग जाते हैं जॉब पे, क्यों, सब्र करेंगे तो फायदा होगा। तो दुनिया के में सब्र करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका जाहर फौरन दुनिया में नतीजा दिखता है। मुश्किल तरीन सब्र दीन के मामले में सब्र है, वजह ही नहीं समझ आती सब्र करें क्यों, क्या थोड़ा हुआ था हमारा इस दीन के बगैर कि हमने अपनी जान पे मुश्किलें डाल ली। क्या मजे से सोते थे, क्या मजे से खाते थे उठते थे, ना कोई पूछता था ना जागता था। आप बाजार जाते हैं, 5-6 घंटे वॉक करते हैं, चलते हैं, खपते हैं, सर में भी दर्द होता है, फिर भी मुस्कुराती हूँ कि थैलों के थैले भरे हुए हैं, वही गुड़िया पटोले गुड़िया की चीजें देख देख के हम खुश हो रहे होते हैं। इस्लाम मताउल गुरूर कहता है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ आ गया। दीन के लिए निकले, सफर करें, चलें फिरें, बहुत काम किए थके, मिला के एंड ऑफ द डे घर वालों की डांट। पहले दीन के तकाजों के मसले, फिर घर वालों को साथ मैनेज करना, तो पता क्या चला कि सबसे मुश्किल सब्र वो होता है जिसमें एक बंदे को अनदेखी जन्नत के लिए सब्र करना पड़ता है। और इस सब्र का यहाँ हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह। मुश्किल तो होगी, सब्र तो करना पड़ेगा। पिछली आयतों से जोड़ लीजिए तो यहाँ मुसलमानों को सब्र की दावत है, जो खान किबले की तब्दीली पे एतराजात उठे थे यहूद की तरफ से, कहा खामोश, इनके ताने सुन लो, इनकी बातें सुन लो, अजियतें पहुंचाते हैं सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हें कह तो कर लो, डोंट वरी। दूसरा देखें इस आयत का, पिछली आयतों से रब तो पीछे जिक्र का तस्करा था, फज़कुरून यज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 11 मुख्तलिफ एंगल दिखा दिए थे जिक्र के, और आपने देखा होगा वो पूरा दीन ही था, इबादत पूरी उसमें आती है। तो इस पे सब्र करो, जो अल्लाह के दीन के अंदर हुक्म उनको मानने पे सब्र करो, इबादतों पे सब्र करो, नमाज पे सब्र करो, मुशक्कत पे सब्र करो। फिर तीसरा, अगर आप इसका पिछली आयत के साथ रब देखें ना, तो पीछे बात ही वश कुरूली वला तकफुरून, शुक्र पे सब्र। ये कौन सा सब्र है? ये नेमतों के मिलने का सब्र है। अब जरा आप सारी चीजों को सामने रखें तो सब्र के तीन मुख्तलिफ दर्जे। नंबर एक, अल्लाह ताला ने इंसान को किसी मुश्किल में डाल दिया, जिस्मानी कल्बी रूहानी, ये आगे बातें आने वाली हैं, इसलिए मैं इसको एक पेराई के सूरत में आपके साथ दोहरा देती हूँ। आती है ना बीमारियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, सदमे भी आते हैं, सब्र करना है। ये सब्र का सबसे हल्का दर्जा है। कोई मर गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया, कोई बीमार हो गया, आपने अल्लाह माजूरनी थी मुसीबत ही पढ़ दिया, ये बहुत हल्का दर्जा है। सब्र का इससे दूसरा दर्जा, सेकंड स्टेज क्या होती है, कि जिन बातों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको करने में जो तकवाती है उस पर सब्र करो। कैसे? नमाज पढ़ते हैं ना, ठंडे पानी से वजू करना पड़ता है, सब्र करो। नमाज पढ़ते हैं जिस्म थकता है, क्याम करते हैं तो पांव सूजते हैं, सब्र करो। हज करते हो, सारे का सारा सब्र है। ठीक है, तो दूसरा दर्जा क्या हुआ कि डूज अमल करना, ये निस्बतन उसकी मुश्किल है पहली की। और तीसरा इंतहाई मुश्किल दर्जा, ना बर्दाश्त होने वाला दर्जा क्या है, कि जिन बातों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है उससे रुकने पे सब्र। गीबत मचल रही है जुबान पे, नफ्स अंगड़ाइयां ले रहा है, बात करनी है, बतानी है दूसरों को, अल्लाह कहते खामोश, इस्तईन बिसब्री वसला, बी पेशेंट बी पेशेंट, सब्र करो। आप अल्लाह के खौफ से गीबत को दिल में ही पेट में ही रोक लेते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाए, पेट में मरोड़ उठने लग जाए, सब्र करना जुबान पे नहीं आएगा, क्योंकि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद। जुबान पे आ गया तो बहुत बड़ा फितना उठ जाएगा। दिल चाह रहा है गंदी चीज देखने को, आंखें भी बेचैन है, दिल भी नफ्स में ख्वाहिशात दिल में आ रही है, आप कहते नहीं देखनी, पसीने पसीने हो जाता है बंदा डोंट्स पे रुकने पे। और मैंने एक दफा एक जुमला कहीं बोला, और हमारी एक साथी है वो वहां थी, उसके बाद काफी अरसे के बाद मिली और फिर कई दफा मुलाकात हुई, तो हमेशा वो जुमला याद दिलाती थी, कहती थी मुझे आपके इस जुमले ने बहुत कुछ समझने पे मौका दिया और मैंने इससे बहुत सीखा। और वो जुमला क्या था कि बहुत सारे हुक्म हम मान लेते हैं, नमाजें पढ़ लेते, ओके, रोजे रख लो, ओके, सदका कर दो, ओके, वॉक कर लो अल्लाह के रास्ते में, ओके 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 ओके, इतनी बातें माननी आसान है, लेकिन एक बात पर रुकना मुश्किल है। डोंट्स मुश्किल लगते हैं, डूज करने आसान लगते हैं, इसलिए तो आज आपको उम्मत मुस्लिमा चूं चूं का मुरब्बा बनी हुई दिखती है, कि नमाजें भी नहीं छोड़ते और गाने भी नहीं छोड़ते, हज पे हज भी हैं और साथ अपनी मर्जी की गंदी जगहों पे भी जाते हैं। तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सब्र का ये जो तीसरा दर्जा है ना, कि मनहियात, मनहियात अब मुश्किल लफ्ज है, डोंट्स का मतलब है, डोंट्स का तर्जमा है, रुकने वाली बातों से रुकना, इस पे सब्र बहुत मुश्किल है। इसी के अंदर शुक्र का सब्र भी समझ लें। मैंने आपको बताया कि सब्र गिरगट की तरह रंग बदलता है, सात रंग होते हैं ना गिरगट के, या कौसो कजा कह लें, नीले पीले लाल हर रंग होते हैं। इसी तरह सब्र के इतने मुख्तलिफ एंगल हैं कि आप पूरे दीन के लफ्ज को बीच में लिखें और आप एरोस लगाएं, आप बनाएं इस पर एक्टिविटी। हमारे दीन का आगाज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। अगर सब्र ना हो तो बंदा अल्लाह को एक नहीं मान सकता। हर तरफ तो आपको एक खुदा दिखता है, हर तरफ तो एक बुत है जो अपनी चमक दमक रंग रूप के साथ दिख रहा है, और पेगन और मुशरिकाना कल्चर तो इतना कलरफुल होता है कि वो रंग फेंक फेंक के आपके दिल को अपनी तरफ मार देते हैं। तो एक अल्लाह पे सब्र करना। आप हजरत मूसा और बनी इसराइल के किस्से में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, इनका मुकालमा हुआ था, हमसे नहीं सब्र होता है खुदा पे, मक्का वालों ने ये कहा था हम नहीं सब्र कर सकते खुदा पे, हमें 360 बुत चाहिए। ठीक है, तो तौहीद क्या है? एक अल्लाह पे सब्र करना। उसके नीचे चलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, उनका रसूल मानना, सच बताइए, आज दुनिया में कितने लीडर दिखते हैं, कितने बड़े बनते हैं, हर एक तो अपने पीछे लगाना चाहता है। अगर बंदे के अंदर सब्र ना हो तो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल पे रुक नहीं सकता, फत्तबेउनी युहिब्बुकुमुल्लाह पे सब्र हो नहीं सकता अगर बंदा अपने आप को जमा के ना रखे। रसूल तो एक कायद है ना कि जिन्होंने ख्वाहिशों पे पाबंदी लगाई, आपको आज ऐसे कायद मिलते हैं, वो कहते हैं आओ हमारे हाथ पे बैत करो, हम तुम्हारे गुनाह बख्शवाने को तैयार, हमें आके चढ़ावे चढ़ा दो, हमें नजरे नियाजे दे दो, हम तुम्हें माफ। पार्डन लोगों ने अपने हाथ में रख ली, गुनाहों की माफी लोगों ने अपने हाथ में रख ली। मैंने पीछे तस्करा किया था कि एक ऐसी स्टूडेंट थी कि जो एक ऐसे फिरके को छोड़ के मुसलमान हुई थी कि जिसमें बड़ी रंगीनी है, उनका जुमला मुझे फिर याद आ गया। उन्होंने कहा कि उस्ताद बहुत सब्र होगा जिसके अंदर वो ये मजहब छोड़ के इस्लाम पे आएगा, क्योंकि इसमें तो रंगीनी ही इतनी है, स्लीवलेस तक पहन सकते हो, बॉयफ्रेंडशिप गर्लफ्रेंडशिप उनके मजहबन जायज है, नमाज की अब जरूरत नहीं, बस जमात खाने में इतना चंदा दे दो, इसमें ये दे दो वो दे दो। तो ये जो रंग बिरंगे उलमाए कराम और रंग बिरंगे लीडर दिखते हैं ना, ये सब्र ना करें तो अल्लाह के नबी पे बंदा जम नहीं सकता। तीसरी चीज देखिए, दीन इस्लाम में क्या आती है, अकीमुस्सलात। सच बताइए, नमाज पढ़ी जा सकती है अगर सब्र ना हो। यहाँ तो बात भी है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात की, सब्र और नमाज साथ साथ। कैसे? अमूमन इंसान का नफ्स क्या चाहता है, खाना पीना बोलना सोना, अच्छी अच्छी बातें सोचना। क्या ये पांच चीजें आप नमाज में कर सकते हैं? खाएंगे तो नमाज टूट जाएगी, बोलेंगे तो नमाज टूट जाएगी, सोएंगे तो नमाज टूट जाएगी, इरादे के साथ इधर उधर की बातें सोचेंगे नमाज टूट जाएगी, चलना फिरना शुरू कर देंगे नमाज टूट जाएगी। तो क्या पता चला कि नमाज पढ़ी नहीं जा सकती जब तक सब्र ना हो। और जिनको बोलने की और सेल फोन पे खेलने की आदत है, उनके लिए तो वो 10 मिनट ही मौत के बन जाते हैं जिस दौरान उनको फोन नहीं अटेंड कर पाना। ठीक है, आगे चलिए। नमाज के बाद ज़कात, ज़कात बंदा दे सकता है अगर उसके अंदर सब्र ना हो। अपनी कमाई 100 रुपए की, उसमें से आप अपने हाथ से 2.5 रुपए दे के आ जाए, मुमकिन नहीं। टैक्स के नाम पे भी देते हैं तो चीखते भी देते हैं ना। सदका खैरात बंदा दे सकता है जब तक सब्र ना हो, गोया कि ये भी हो गया। रोजा, हदीस में एक चौथा मानी सब्र का वो रोजे को भी कहा गया है। हदीस में आता है कि रोजा क्या है, शहरु सब्र, क्योंकि रोजे में तो इंतहा दर्जे का सब्र है ना, ये सारे सब्र की किस्में उसमें मिल जाती हैं। ना देख सकते हैं कोई चीज, ना चीज बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना नफ्स के तकाजे पूरे कर सकते हैं। आप इस सारी चीजों को फैलाते जाएं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम से लेकर हज जिहाद और उसके बाद मामलात पे चल पड़े। रिश्तेदारों के हकूक दिए जा सकते हैं अगर आप में सब्र ना हो, वो आपके साथ बुरा करें आप उनके साथ अच्छा कर सकते हैं। कनात क्या है, शुक्र क्या है, सब्र। तो सब्र पूरे दीन का खुलासा है। बुखारी की बड़ी खूबसूरत रिवायत है जिसमें सब्र को दीन का हिस्सा कहा गया, यानी अल्लाह ये नेमत देता ही नहीं है किसी को अपनी जब तक के वो मांगे ना। अब इन सारी नेम सब्र की जो तारीफात है ना, इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, और वो क्या है, एक होता है तकलीफों के आने पे सब्र, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। एक बड़ा अनोखा सब्र है, लाडला सब्र, और वो क्या है, नेमतों के मिलने पे सब्र। ये बड़ा मुश्किल है, लोग दुखों पे तकलीफों पे गमों पे बीमारियों पे सब्र कर लेते हैं, नेमतों पे सब्र नहीं कर पाते, खुशियों पे सब्र नहीं पाता। कभी पहला बेटा, उसकी शादी है, अब कैसे सब्र करें, रुक गई ना, रोकना है। अल्लाह कहता है खुशी है, इस हद से आगे ये गलत काम नहीं कर रहे। अब कहते हैं नहीं क्या करें, खुशी बड़ी है, पहला बेटा, इसका क्या मसला, ये सबसे छोटा बेटा है, इसका क्या करें जी, ये अकलौती बेटी है, इसका क्या करें कि जी घर बहुत बड़ा मिला। जब बंदे को कोई नेमत मिलती है ना, तो सब्र का सबसे मुश्किल पर्चा होता है। और पीछे बनी इसराइल के तनाजर में आपको सुनाया था कि फिरौन की गुलामी में जब तक थे सब्र पे रहे, वो इज़तरारी सब्र था, उसमें कामयाब हुए, अल्लाह ने उनको इनाम दिया, फिरौन को डुबो दिया, वहां कामयाब थे। जो ही फिरौन की गुलामी से निकले, वादी ती में आए, कहने लगे लन नस्बिराला तौमिन वाहिद, तो खुशियों का सब्र नहीं कर सके। आज भी उम्मते मुस्लिमा का यही मसला है कि वो दुखों के वक्त सब्र कर लेते हैं। दुख वाले घर, मैयत वाले घर में कोई नहीं कहता सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, खुशियों पे कहते हैं ये कैसे, उस पर औरतें अलग बैठे मर्द अलग बैठे। बाकी बात तो वो सच कहते हैं, इतनी मेहनत से जो सच संवर के आए, ये क्या वह कैदी मखलूक उससे महरूम रह जाए। औरतों में बैठ के दिखाएंगे औरतों ने कौन सा खुश होना। सच बताएं, औरतें दूसरी औरतों के कपड़े देख के खुश होती, वो तो जल के भुन जाती है देखते, तो वो खुश होते हैं बेचारे जिनको नहीं होना। हाँ तो काम तो बहुत पड़ गया, इतनी मेहनत से सजे संवरे, अब क्या सर पे दुपट्टा ले लो, अब दुल्हन को मेकअप करा दिया और अब उसको कहेंगे वजू करो नमाज पढ़ो, ये सबर मुश्किल है। और जब कोई कौम खुशियों के सबर में अपने आप को नहीं रखती ना रोकती, तो फिर अल्लाह ताला उसको खसोखाशाक की तरफ इस देता है। मत सोचिए कि आज ही सिर्फ हमारे पास खुशियां आई हैं, सहाबों को भी खुशियां मिलती थी, अल्लाह के नबी को खुशियां मिलती थी, हजरत हुजैफा जो थे आप, हजरत हुजैफा नहीं बल्कि आप अगर उनकी बात सुने, हजरत हंजला की शादी की नवेली शादी थी और कॉल आई जहाद की, चलो निकलो फी सबीलिल्लाह, निकल गए, निकल के गए और शहीद हो गए। ये सब्र है आपकी अपनी प्यारी बेटियां, आपके अपने प्यारे बच्चे जिहाद के रस्तों में सब्र करवाते करवाए लेके जा रहे हैं, बदर के लिए निकल रहे हैं, तो आपकी एक बेटी बीमार है। अब हम होते कहते जी बोझ कौन हो, दीन का काम भाड़ में जाए, ठेका नहीं लिया हुआ हमने सबका, हम तो नहीं है, होता है तो कर ले छुट्टी। बेटी बीमार है दुखी है, अल्लाह के नबी ने कहा हाँ दामाद तुम बैठो तुम खिदमत करो मैं चलता हूँ। हजरत उस्मान को छुट्टी मिल गई कि आप टेक केयर करें, और उधर से बदर की खुशखबरी लेके पलटे, खुशी थी ना, और आते ही देखा तो बेटी का जनाजा जो था वो दफनाया जा रहा है। इस्ताईन बिस्सब्री वस्सलाम, तो भूख के लिए निकले ऐसे ही जैसे यहाँ आप इस वक्त समझिए यूरोप में, तो आपको एशिया के किसी मुल्क में जाना पड़े इतना लंबा सफर, और बेटी फिर दूसरी बीमार है, क्या उनकी जिंदगी में खुशियां और गम साथ नहीं थे? हम होते तो उस वक्त लंबी छुट्टी का पर्चा लिख के जा चुके होते हैं, पर्चा भी तब देते जब कोई एहसास होता, हम तो वो भी ना देना पसंद करें। और आपने कहा नहीं उस्मान आप इनकी टेक केयर करें मैं जाता हूँ। इतने मवाक़े अल्लाह के नबी की जिंदगी के वस्ताइन बिस्सब्री वस्सलात, के दीन को राइज करने दीन को नाफिज करने में आपने अपने जाती रिश्तों को पीछे डाल दिया, अपनी जाती कुर्बानियां दी। आपकी बेटी का बच्चा बीमार है, कितना प्यारा होता है हमें नवासा पोता, मेरा ले अपने बच्चों से ज्यादा लोग अपने बच्चों के बच्चों से प्यार करते हैं, और आपकी बेटी का बच्चा बीमार है और वो पैगाम दे रही है कि अब्बा आ जाए जरा बच्चे को देख लें, तो आप किसी दीन के काम में थे? कहा कि बेटा इस वक्त मसरूफ हूँ। थोड़ी वक्त गुजर गया फिर पैगाम आया कि अब तो बच्चा फौत हो गया, काम खत्म हुआ तो वापस आके फिर उस बच्चे को गोद में लिया और आपकी आंखों में आंसू थे, और कहा इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता व कुल्ल शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब, ये ताज़ियत की दुआ है। कहा मेरी बेटी अल्लाह ही का था जो उसने दिया, जो ले लिया उसका है, और जो भी पास है वो भी उसका है, यानी उम्मीद रखो ये भी किसी वक्त चला जाएगा, क्योंकि हर चीज उसने खास वक्त तक के लिए हमें दी है, बस चाहिए कि सब्र करो और इस पे अल्लाह तआला से अजर मांगो। तो ये है या अय्युल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, अपनी जात के तकाजों को पीछे डालना और दीन के तकाजों को आगे करना, ये है इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। जो कौम अल्लाह के दीन को सीखने के लिए सिखाने के लिए और उसमें मदद करने के लिए ये सब्र नहीं कर सकती, वो कभी शहादत हक की गवाहियां नहीं कायम कर सकती, वो उम्मत वसत का मुकाम हासिल कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला कहते हैं कि मदद मांगो। अच्छा सवाल पैदा होते हैं कि क्या इनके रिश्ते नहीं थे, दर्द नहीं होती थी, क्या कठोर लोग थे? ना इनको किसी के मरने का गम, ना इनको किसी के जीने की खुशी, बाहर तो यही लग रहा है। तो यहाँ आपको उसका रास बताया जा रहा है कि नहीं, इंसान थे, पत्थर दिल लोग नहीं थे, लेकिन मकसद प्यारा था, धुन सवार थी, पैशन था, दीन उनका मिशन था, ये उनका प्रोफेशन नहीं था, कारोबार नहीं था। देखिए पैसे के लिए जब बंदा दीन का काम करता है ना, पैसे की भी एक हद होती है, एक वक्त आता है जब नींद आई कहता है जाओ छुट्टी काट लो मेरी, मैं नहीं आ रहा, खत्म। पैसे के लिए दीन का काम करने लगे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि दीनदारी फिर दुकानदारी बन जाएगी, उससे ज्यादा पैसा कोई दिखाएगा वो वहां चले जाएंगे, वो नहीं उठते। एक चीज है जो बंदे को उठाती है और वो ये कि वो उसका पैशन बन। आप देखें जब हमारे जुनून सवार होता है तो हमें रातों को भी नहीं नींद आती, जोश होता है, रात को कपड़े रख के बच्चे सोते हैं क्योंकि सुबह उठ के पिकनिक पे जाना है, तो उनको धुन सवार है। बिल्कुल इसको यूं समझें कि जैसे आप काम कर रही हैं बड़े शौक से किचन में, क्योंकि रात को आपकी दोस्तें आ रही हैं, आपके पसंदीदा मेहमान हैं, कितनी दफा सच बताएं औरतों के हाथों पे कट लगते हैं, प्याज काटते हुए, सब्जी छीलते हुए, कभी लेके बैठ गई पट्टी बांध के, दावत ही मनसूख कर दो क्योंकि चोट लग गई है, याद भी नहीं रहता, चोटें तब याद आती हैं जब सारे मेहमान चले जाएं तो रात को बिस्तर में लेटे थे, यहाँ चोट लगी थी, यहाँ पाँव का नाखून टूटा था, क्या उस वक्त धुन सवार थी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें धुन सवार कर। ये अपना हाल बार बार पूछना ना, नफ्से देखना, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं मुनासिब हूँ, अब सर्दी तो नहीं, अब गर्मी तो नहीं, अब मैं आ सकती हूँ, आई कैन डू इट दिस, वो लोग नहीं कर सकते। याद रखिए, दीन का काम नाजुक मिजाज लोग कभी नहीं कर सकते, सेंसिटिव लोग कभी नहीं कर सकते, ये तो पत्थर की चट्टानों वाले लोग काम करते हैं, दुनिया में इनकी ठोकर से सहरा दरिया, और हाल ही पूछते रहे, अभी जेट लॉग से नहीं निकले, अब वो दीन का काम कहाँ करें, अभी थकन बड़ी थी तो अब दीन का काम क्या करें, अब एक दिन काम ज्यादा कर दिया तो अगले दिन छुट्टी चाहिए, ये नहीं हो सकता। आप इसे एक आयत की तफसीर में पूरा कुरान पढ़ेंगी कि सहाबा कराम अभी एक जंग से नहीं निकलते थे, दूसरी जंग में जाना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा जिक्र तो पीछे हुआ है, आगे आपके साथ होगा, अभी जख्म नहीं मुंदमिल हुए उहद के उनको हमारा उल असद के लिए जाना पड़ा, अभी गजवे अहजाब की वो ठंडी चोटें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि बनी कुरैज़ा के लिए जाना पड़ता, चलते थे, कोई नहीं पलटता तो कहते थे आपने कह दिया, मैंने को तैयार है, क्योंकि इस्तईन बिस्सब्र वस्सलाम। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, अब सवाल ये है मेरा आपसे भी और अपने आप से कि ये एनर्जी कैसे मिली, तो पहला तो बता दिया कि दीन के काम को अपना पैशन बना लें, आपका इस वक्त दीन का काम क्या है, ये कोर्स, ये आपका इल्म सीखना, आपका इस क्लास में आना, इसको पैशन बनाए, ना सुबह उठ के आपने अपना हाल पूछना है, पेट में दर्द है होता रहे, हु केयर्स, पीछे आके लेट जाए, उल्टियां आज साथ एक बर्तन ले आए उसमें वॉमिट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, प्रेग्नेंट हो गए पीछे बैठ जाए खिड़की के पास, आपको उसे नोजिया नहीं होगा, होता है तो होता रहे, मैंने अपना हाल नहीं पूछा, बुखार है कोई बात नहीं, एक या चार कपड़े पहन के आ जाए, हाल नहीं पूछना अपना, वरना याद रखिए पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल गैर मखसूस तरीकों से शैतान आपको इस काम से रोक देगा, सर्दी गर्मी धूप छांव बर्दाश्त, उनकी नजर उनकी जिंदगी में ये उनकी डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं होते, बाहर लोग कहते हैं कि होता कुछ नहीं है, सबको सब कुछ होता है, क्योंकि सब कमजोर है, सब इंसान है, लेकिन वो अपना हाल नहीं पूछते और दूसरों को अपना दुख नहीं सुनाते। फिर पहली चीज पैशन, दूसरी चीज चलिए मान लिया पैशन भी बन गया फिर भी इंसान है तो वे सब्र, जब दीन के रास्ते की कोई मुश्किल आए जाए नमाज पर खड़े हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में सहाबा किराम कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी के ऊपर कोई मुश्किल पड़ती आप नमाज की तरफ भागते, जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आती आप दुआएं मांगते, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, आज हमने इन दुआओं से तो खुद को बिल्कुल काट के रख दिया, क्योंकि हम खुद बड़े खूबसूरत लफ्ज बोल लेते हैं, हमें नबी सल्लम की दुआओं की क्या जरूरत है। तो तीसरी चीज दुआएं मांगे, अल्लाह से कहें कि अल्लाह कोई जिंदगी में ऐसा मामला ना आ जाए कि मैं तेरे रास्ते से हट जाऊं, अपने आप को इन नमाजों से रखें जोड़े, नमाज दुआ कुरान, ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपसे ज्यादा दीन का काम कर रहे हैं, न्यू मुस्लिम्स की कहानियां पढ़ें जो रास्ते उनके थे, मैं और आप तो इधर इतने नरम गरम घरों से निकल कर नरम गरम कुर्सियों पे आके बैठ जाते हैं, आप उन लोगों को पढ़ें जो जाके जंगलों में से गुजर गुजर के जाते हैं और वहां जाके न कुरान सीखते हैं और किताबें पढ़ते हैं, तो हमेशा एक इंसान अपने ऊपर एक गहरी न रखे कि मैंने अपने आप को कहाँ तक देखना है, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इससे फायदा होगा। नमाज जो है ना ये इंसान को एनर्जी देती है, फ्यूल टैंक है, शर्त एक ही है कि नमाज की रूह जिंदा हो, मुर्दा नमाजें तो हम फर्ज भी पढ़ लेते हैं तो कुछ नहीं होता, या नोट करें बिस सलात जो ये फर्ज नमाज नहीं है, वो तो पढ़नी पढ़नी है, खुशी गम दुख सुख, ये जो बिस सलात है ये नफिल नमाज है, आजमा के देखें, कोई आपको दीन का कोई ताना देता है, किसी ने आपके निकाब के ऊपर बात कर दी, हिजाब पे बात कर दी, किसी ने आपके कुरान पढ़ने पे बात कर दी, किसी ने सरे महफिल आपको दिल तोड़ के रख दिया आपका, आप तो बड़े शौक में जाके बता रहे थे कि क्लास ली ये किया, उन्होंने कैसा जुमला बोला कि आपका दिल चूर चूर हो गया, वहीं से उठे सीधा वजू करें उनके साइड पे खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दें, बिल्कुल वही मिसाल जो पहले कभी भी होगी आपको कि जैसे पेट्रोल पंप है ना, वहां जब गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है, नमाज मोमिन का पेट्रोल पंप है, नमाज से ईमान की एनर्जी मिलती है, गैस मिलती है, जब ये लेवल कम होने लगता है ना, थोड़ी बहुत नींदें काम करने से, फौरन जाके फिर काम शुरू कर दें, फिर जाके नमाज पढ़े थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये जो 5 दफा नमाज पढ़ाई जाती है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे दिन में कम अज कम हम लोग 2-3 बार तो खाते ही है ना। तो रूहानी खाने का नाम नमाज है, ताल्लुक बिल्ला की दलील नमाज है। ताल्लुक मेरा अल्लाह से कैसा है, आप में अपनी नमाज देख लो, इसमें इंशाल्लाह आपको दिखेगा, फिर आप देखे फिक्र नहीं होगी। एक सहाबी थे, किसी जंग में उनकी बैक पे हड्डी के अंदर तीर घुस गया। अब आपको पता है घुस तो गया होगा, एनर्जी के साथ निकालने में तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ थी कि छोड़ दिया। इतने नमाज का वक्त हो गया, कहने लगे कि नमाज के दौरान कोशिश करना, क्योंकि मुझे अक्सर होश नहीं रहता अपनी नमाज में कि मैं कहाँ हूँ, शायद कम तकलीफ हो, नमाज भी पढ़ ली। सलाम फेर के कहते हैं, लोगों ने तुम्हें मौका दिया था तीर निकालने का, तो क्यों नहीं निकाला? तो आप क्या बात करते हैं, हमने तो भी पहली रकत में थे तो निकाल लिया था। दो आलम से करती है बेगाना दिन को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। असल मसला ये कि हमारी तो नमाज में भी अल्लाह से मुलाकात नहीं होती, हमारी तो नमाजें टकरे हैं। वो कहते हैं ना, दिल जब तेरा नमाज में ना हो, क्या मिले तुझे इस नमाज से? तो नमाजों को जिंदा करें, दुख सुख सुना के आए रब को, फिर देखिए इससे आपको फायदा होता है। और आप यहाँ एक छोटी सी बात और नोट करें, फिर आगे चलते हैं। और वो क्या कि बिसब्र, सब्र के साथ और नमाज के साथ। पहले तो आप इसको समझें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पेंसिल आप ले लें, इसका मतलब ये कि मैंने आपको ये पेंसिल दे दी और ये पेंसिल आपकी हो गई, आपने जाके अपने पर्स में रख ली, एक तो बात यह है। और मैं आपको दूसरी सर में कहूँ कि आप इस पेंसिल से मदद ले लें, तो मतलब क्या हुआ कि आप इस पेंसिल को यूज करें, इससे नोट्स ले लें जो नहीं लिख रही थी, आपका पेन नहीं चल रहा था। यहां अंदाज के बिस सब्र, सब्र के साथ मदद लो, ये नहीं कि सब्र को जाके किसी पाउच में डाल के रख दो, मुराद है कि सब्र को कैश कराओ। इस सब्र के साथ अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे काबू पाओ। और इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह को पता है कि कौन इस रास्ते में मेरे मुश्किलात सह रहा है। मनसबे अमामत पे मामूर होने के बाद अब काम आएंगे, होंगे कि नहीं? कभी ऐसा हो कि किसी की जॉब बटर कबूल हो जाए और उसको ऑफर हो जाए और उसके बाद उसे कहा जाए सोते रहो? जैसे किसी की जॉब पक्की हो जाती है उसके बाद क्या होता है बताइए? खुश होता है ना, यूनिफॉर्म होगा, जॉब शुरू हुई, अब आप उसकी तैयारियां कर रहे हैं, रात को जल्दी सो रहे हैं, फिर सुबह आप जल्दी उठेंगे, फिर आप बस पकड़ेंगे, फिर आप वहां जाएंगे, फिर 5-6 घंटे की काम करके फिर वापसी के सारे मराहल लेंगे, इसका नाम है ना जॉब होनी। तो कभी ऐसा हुआ कोई कहता है ये लीजिए जी, ये आपका जॉब लेटर है, अब आपको मिल गया, अब जाके सो जाए? उम्मत मुस्लिमा को क्या कहा, वकजालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन, ये क्या था, जॉब मिल गई तो अब क्या कहा, जाके सो दूं? आज उम्मत इस जॉब लेटर पे साइन करने के बाद सो रही है, जैसे ही जैसे आप इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और जाके सो जाएं, हो जाएगा कोर्स आपका, मेडिकल कॉलेज में दाखला ले लें और जाके सो जाएं, जी मिल गया, अब काम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि ये रास्ता कोई फूलों का रास्ता नहीं है, इस पर तुम्हें जान भी देनी पड़ेगी, माल भी देना पड़ेगा, मुश्किलात भी होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सब्र होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर रहमतें आम होंगी। इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात, और इधर इस्ताईनु बिस्सब्री सलात इस्तकामत भी है, बस जम जाओ, ठुक जाओ, अल्लाह के रास्ते में जब निकले हो अब बड़े से बड़ा तूफान आ जाए तुम्हारे आसाब ना टूटे, मजबूत हो जाओ। मोमिन जो होता है वो इस तरह से छुई मुई का फूल नहीं होता, वो हक और बातिल के रास्ते की जो फ्रिक्शन होती है उसको बर्दाश्त करता है, बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए कि एक ऑपोजिट द विंड जाने वाली कैफियत है, सोसाइटी आपको कहीं और बुला रही है, कुरान आपको कहीं और बुला रहा है, फिर इसे हर मौके पे मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रहती हैं। तो इसलिए फरमाया सब्र करो, खुद भी जमना है, दूसरों को भी जमाना है, अल्लाह के दी अल्लाह की इताअत भी करनी है, नाफरमानियों से रुकना है, अल्लाह के बागियों से जिहाद करना है, हक के खिलाफ जब लोग बातें करते हैं, साजिशें करते हैं, तो उसको सुनकर सब्र करना है। हक की हक वाले बहुत थोड़े हैं, साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, उस किल्लत पे सब्र करना है, इस रास्ते के खतरों पे सब्र करना है, नफ्स के रुझानात हैं, दिल अपना अभी भी नहीं सही हुआ, अभी तो वो भी दिल थोड़ी देर बाद दिल चाहता है कि जरा पीछे झांक के देख लें क्या अच्छी चीजें देखते और सुनते थे, बोलते थे। अब तो कोई फन ही नहीं रहा। इतनी मुख्तलिफ आंधों के बीच में एक बंदा चल रहा होता है तो उसमें कहा वस्ता ही नो बे सब्री वस्ता। मुझे ऐसे लग रहा है कि सिख आयत में अल्लाह ताला ने ह्यूमन साइकोलॉजी को खोल के रख दिया बिल्कुल। तुम तो तेज, वो कहते हैं ना, ना घबरा तुम दिए बाद मुखालिफ से औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरे तस्वर में इस आयत को पढ़ाते हुए ऐसे आ रहा है जैसे राइड्स होती है ना, बात बात लोग खुद बड़ी तेज तेज राइड्स में जाते हैं। आप देखिए कितना थक जाता है इंसान ऐसी जगहों से आए तो। क्यों? क्योंकि अपने आप को बचाना होता है। घूम रही है, घूम रही है वो गाड़ी, तो आपने अपने आप को चाहे बेल्टों में बांधा लेकिन आपके सांस जो है वो थकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के रास्ते में ये कुछ होता है। और इस रास्ते में अगर मुश्किल है तो नमाज, नमाज वो चश्मा है जो कभी खुश्क नहीं होता। ये वो जाते रहा है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये वो रास्ता है जहां से इंसान को ताकत मिलती है और दिल मजबूत होता है और सब्र की रस्सी दराज होती है, टूटती नहीं है। नमाज मोमिन को बांध देती है। दुआ कीजिए कि कमजोर सा बंदा इतनी बड़ी हस्ती के साथ ताल्लुक जोड़ ले। बस असल बात है, बात लंबी होती जा रही है लेकिन फिर दिल चाह रहा है एक मिसाल देने अल्लाह ताला ने दी। आप देखिए कि एक छोटी सी बेल होती है ना, आप देखेंगे वो जमीन पे पड़ी रहती है, अक्सर लोगों के पाँव में ही आके उछल जाती है। उस पर फल फूल लग भी जाए तो वो भी जमीन पे कीड़ों के साथ होता है। आप उसी कमजोर बेल को, जैसे ये देखें, ये अगर बेल थी, ये इधर पड़ी हुई थी, अब आपने इस बेल को किया क्या कि बस इसका एक सिरा इधर से उठा के ना तो ऊपर एक रस्सी के साथ बांध दिया घर की छत के। अब क्या होगा भला? अब एक मजबूत है, आप इसको बना ले, आपने इसको अगर इसके साथ बांध दिया, अब आप देखिए कि ये रस्सी जब ऊपर जाएगी ना तो एक दिन आएगा कि ये पूरी छत की तरह ऊपर आ जाएगी। इस मजबूत रस्सी ने या दरख्त ने इस कमजोर बेल को ऐसा सहारा दिया कि थोड़ी देर बाद इसके नीचे गुच्छे लटकने लग गए। हमने देखा था ना नेवर्थ के अंदर कि खजूर अंगूर के दरख्त हैं, पत्ते सॉरी बेल है, और ऊपर के यार नीचे उसके गुच्छे लटक रहे हैं, कि देखने में ऐसे ही लगा कि मैंने समझा कि इन्होंने आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं लेकिन वो रियल थे। इस दरख्त ने इस कमजोर बेल को इतना स्ट्रांग कर दिया कि उसने फिर फल भी दिया और वो दूसरों के सहारे का सबब बने। ये कमजोर बेल में और आप है, ये मजबूत सहारा अल्लाह का है। अल्लाह कहते हैं बस तई नबे सबरी वसलाम, अपने जो काम खुद नहीं कर सकते मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं तुम्हारी इस कमजोर बेल को जमीन नहीं फिर बिछने दूंगा, मैं तुम्हें इतना ऊंचा कर दूंगा कि तुम इंसानियत के लिए एक शेल्टर बन जाओगे। शर्त यही है कि बंदे के अंदर कमिटमेंट मौजूद हो। और फिर इसके बाद जब इंसान निकलता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कैसे करता है? अगली आयत को देखिए कि अभी तो थोड़ी मुश्किलें आई हैं, इस रस्ते में तो जान भी चली जाएगी, लिहाजा वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए इनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि ये लोग तो जिंदा हैं मगर तुमको इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। पहले तो इस आयत का दूसरी आयत से रब समझ लीजिए, पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं सबर की बात, सबर की बात, और यहाँ सबर और नमाज के साथ ही शहादत फी सबीलिल्लाह की बात देकर क्या बता दिया कि अभी जो मुश्किल आई हैं ये छोटी हैं, अभी इससे बड़ी मुश्किल आ सकती है। और वो क्या? अभी तुमने वक्त लगाना शुरू किया ना अल्लाह के रास्ते में, कुछ माल लगना लग गया तुम्हारा, कुछ तुम्हें अपने नफ्स के तकाजे दबाने पड़ते हैं ना, भूख प्यास पे सबर करते हो ना, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी जान भी जानी पड़ी इस रास्ते में तो जाएगी, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी जान जाके भी जाएगी नहीं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 में और 170 में भी यही बात आती है कि वला तक्सबन अल्लज़ीन कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए उनको हरगिज मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिका युरज़कून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उनको रिस्क दिया जाता है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, वो खुशियां मार रहे हैं उस चीज पे जो फजल उनको अल्लाह ने दिया। व यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यलहकू बिहिम मिन खल्फिहिम, और उनकी खुशखबरियां भी पाते हैं जो लोग अभी उनके पीछे हैं और उनसे मिले नहीं, कि अल्लाह खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वो गमज़दा नहीं होंगे। कहते हैं कि ये आयत जो है ये बदर के शुहदा के बारे में नाजिल हुई, कि जब ग़ज़वे बदर के दिन 14 मुसलमान शहीद हो गए, 6 मुहाजरीन थे, 8 अंसार में से थे। मुहाजरीन के नाम भी किताबों में मौजूद है और अंसार के भी मौजूद हैं। तो लोग उस दिन जाके यही कहने लगे, हाय देखो फुलां भी मर गया, हाय फुलां भी मर गया मर गया। क्योंकि उस वक्त पहली जंग थी, किसी को पता भी नहीं था कि अल्लाह के रास्ते में मरने वालों को क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि उनकी शान में यह आयत उतरी कि वला तकूनु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, ये मर के भी नहीं मरे बल्कि ये जिंदा है। अब ये आयत पहली बातों में ये समझा रही है कि अल्लाह के रास्ते में जान भी जा सकती है, सब्र करना पड़ेगा, खुशियां मनानी पड़ेंगी। इस मिशन की तकमील के लिए अगर जान देनी पड़ी तो दे दो। सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोगों को मुर्दा क्यों ना कहें, पहला सवाल। तो इसका जवाब लिखिए, क्योंकि वो मिशन जिंदा है जिसके लिए इन्होंने जान दी, वो दीन जिंदा है जिसके लिए इन्होंने जान दी, और वो जात अल हय्युल कय्यूम जिंदा है जिसके रास्ते में इन्होंने अपनी जानें दी। शर्त अव्वल लगा दी, ठीक है। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि इनको मुर्दा इसलिए ना कहो कि इन्होंने अपनी ये वक्ती जिंदगी देकर एक अबदी जिंदगी खरीद ली है। शुहदा अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम है, हमारे यहाँ लफ्ज शहीद बड़ा कॉमन भी है और बहुत मिसअंडरस्टूड भी है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। दुनिया में शहादतें हक की गवाहियां देने वाला, आसान लफ्जों में कह दूं अल्लाह के दीन को फैलाने वाला जिंदा शहीद होता है, मर के वो आला दर्जे की शहादत पा लेता है। एक बंदा अल्लाह के दीन को अपने गोद के बच्चों से भी प्यारा रखता है, संभालता, ख्याल करता, गर्मी सर्दी से बचाता, लोगों के अकायद की इसलाह करता, उनकी आदात की इसलाह करता, इसी रास्ते में एक दिन ऐसा वक्त भी आ जाता है कि उसको अपनी जान देकर भी इस दीन को बचाना पड़ता है, तो अल्लाह ताला उसको एक आखिरत की शहादत दे देता है। शहीद से मुराद वो नहीं है कि जो नमाज भी ना पढ़े, रोजे भी ना रखे, फराइज की पाबंदी ना करे और किसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया तो खबर फैल जाती है फलां शहीद हो गए, फलां सारी जिंदगी सियासत के नाम पे काम करता रहा, को कुर्सी की इकतदार की जंग थी और मारे गए, और कहा ये हमारे शहीद और हमारे शहीदात हैं। किसी इंसान का नाम लेके ना मैं कुछ कह सकती हूँ, ना आप सोच भी नहीं सकते। जो मरा उसका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन शहीद वो है। लिखे ये तारीफ आपने कभी नहीं सुनी होगी शहीद की, अगर आपने कुरान को तफसीर से अभी तक नहीं पढ़ा। शहीद वो है जिसको दुनिया में धुन सवार होती है अल्लाह के दीन को बुलंद करने की, फिर कहा कि वो बिस्तर पे भी मारा जाए तो शहीद, वो ताउन की बीमारी से मारा जाए तो शहीद, बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में औरत मारी गई तो शहीद, जान बचाते हुए, ईमान बचाते हुए, माल बचाते हुए मारा गया तो शहीद, कस्बे हलाल की कोशिश में मारा गया तो शहीद, अचानक मौत तो शहीद। बात समझ आ रही है? ये सारे जो जुमले मैं बोल रही हूँ ये वो शहदा के मुख्तलिफ दर्जे हैं कि किस किस चीज पे हदीस में शहीद होने की खुशखबरी है। शर्त एक है कि पीछे से उसका दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ा। बात बात सवालों के जवाब मिल रहे हैं। जो लोग पूछते हैं अच्छा फलां शहीद है, वो फलां बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए तो वो शहीद है, वो फलां जी बाज दफा तो हाईजैकर्स तक और बाज दफा तो क्रिमिनल्स होते हैं किसी मुल्क के, और उनकी मौत की सूरत में अखबारों में खबरें आ जाती हैं फलां शहीद हो गए। अल्लाह जाने, अल्लाह के बंदे जाने, लेकिन समझ के आ गई कि जिसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल वाली होती है और उस शऊर के साथ जीता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये सारी बातें रखी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब शहीद की जिंदगी कैसी होती है, तो यहाँ छोटी सी बात समझिए कि हर बंदे को दुनिया से जाने के बाद दोबारा उठाए जाने के से पहले, बात वैसे फिर इसी मिसाल को ले लीजिए, ये आपकी दुनिया है, ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो जगह है ये एक बंदे की दुनिया की जिंदगी है जो मेरी और आपकी है, हमारे इस हैंड पे जो जगह है ना ये हमारी जन्नत या जहन्नुम है, ये कियामत के बाद की जिंदगी है। तो ये जो मेरा स्टेज आपने इधर रखा हुआ ना ये है बरजख, इसको बरजख कहते हैं। ये वो जगह होती है कि मरने के बाद से लेकर दोबारा उठाए जाने के बीच का वक्त, जिसको हम आलम कब्र भी कह सकते हैं, कोई डूब जाए, कोई जला दिया जाए, किसी को परिंदे नोच के खा जाए, कोई जहाज के क्रैश में मारा जाए, ये वक्त जो है ये बरजख है। बरजख क्यों कहते हैं? पर्दा, हमारी तरफ से कार्ड आ जाती है। सूरत मोमिनून आयत 100 में आता है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून, दोबारा उठाए जाने के दिन तक इनका ये बरज़ख है। आम लोगों का हाल क्या है, फिर शहीद का समझेंगे आप। आम लोगों का हाल क्या है कि जब कोई मरता है ना तो उसका इस दुनिया से रब्ता खत्म, उसको नहीं पता बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है, उसकी शादी है, उसका रिश्ता है। जो हमें ख्वाब आते हैं ना माँ के, कह गई ख्वाब में जी इधर रिश्ता कर दो, और माँ आ गई कि बेटी तू दुखी लग रही है, आते हैं ख्वाब और सच हो सकता है, ये सच हो सकते हैं, लेकिन ये आपका उनके साथ ताल्लुक है। दुनिया में भी आपको माँ के साथ दुख सुख की आदत थी, आज आप दुखी थे ख्वाब में, माँ आके आपके सर पे हाथ फेर जाती है, लेकिन इस स्टेज वाले बरजख पे सोई या फौत हुई माँ को नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। ये हमारा ईमान है, ठीक है। मोमिन की और काफिर की, फाजिर की, ये कब्र की जिंदगी मुख्तलिफ होती है, इस पर हम इस पर बात नहीं करेंगे, हमारा मौजू नहीं है, लेकिन इसको एक किस्म का सिंबल बना दिया जाता है कि आगे कैसे हालात हैं। हम पढ़ेंगे सूरत अल अराफ में भी इंशाल्लाह, और सूरत अल इब्राहिम में भी पढ़ेंगे कि मरने के बाद रूह के साथ जो मामला होता है उसकी रोशनी में मोमिन की रूह को जन्नत दिखा दी जाती है, लेकिन वापस फिर इसी कब्र में आना है। काफिर को भी ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ला तो पत्ता लहुम अबवाबुस समा, और उनको वापस डाल दिया जाता है। आम बंदा मोमिन अपना बरजख इस कब्र में यूज करता है, और वो इंतजार करता है कि अब जन्नत क्यामत आए और मैं जन्नत में जाऊं बिलफर्ज, और काफिर दुआ करता है कि अल्लाह ना करे कभी क्यामत आए और मैं असल जहन्नुम में जाऊं। ये तो है आम मोमिनों का हाल, फाजिर उसका हाल समझ लीजिए जो यहाँ कहा जा रहा है। आगे सूरत अल इमरान में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन मोमिन का तो ये हाल है, मरा, मरने के बाद उसको दिखाई जन्नत, वापिस ला दिया गया और कब्र में, लेकिन अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले का ये जो बरजख है ना, ये कब्र में नहीं होता। अल्लाह उसकी रूह को जन्नत के अंदर सब परिंदों के अंदर डाल के जन्नत में छोड़ देता है, सारा दिन खाते पीते चरते चुरते रहते हैं, और रात को अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर कंदील लगे हुए हैं बड़े बड़े जैसे शेंगलर्स, उनके अंदर आके सो जाते हैं। और हदीस में आता है कि जब रोज ऐसा होता है तो एक दिन अल्लाह ताला फिर उनको कभी पूछता है, क्या मेरे रास्ते के शहीदों मुझसे तुम खुश हो? कहते खुश क्यों ना हो, जन्नत में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब्ज रंग की के परिंदों में उनकी रूहें ढाली जाती हैं, बस जैसे फॉर्म जिसम तो इधर ही होता है लेकिन रूह के साथ ये सारा मामला किया जाता है। तो कहा जाता है कि बताओ खुश हो? कहते बहुत खुश है। मांगो क्या मांगते हो? कहते क्या मांगे अल्लाह, जो तूने हमें दे दिया इससे ज्यादा और क्या मांगे। फिर अल्लाह तआला कहते नहीं तुम मांगो, मेरा आज मैं तुमसे खुश, मेरा दिल चाहता है मांगो। और आप देखिए अल्लाह क्यों ना उस बंदे की कदर करे जो उसके दीन की कदर करे। आप थोड़ी देर किसी का बच्चा होल्ड कर लेते हैं ना, तो माँ आके थैंक यू करके आपके गले लगती है। तो अल्लाह के दीन को आपने होल्ड किया हुआ है, आपको गम है नस्लों का, आपको फिक्र है लोगों के अकायद की इसलाह की, आपको फिक्र है लोगों के लिबासों की, लोगों के दिमागी तोाजन ठीक हो जाए, कि आपका ख्याल अल्लाह कदर नहीं करेगा? लोग तो नहीं कदर करते, अभी कोई नहीं सकता, कितनी कुक करेगा, नोक की कितनी कदर हुई, अल्लाह कदर करता है। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला उनसे कहते हैं कुछ मांगो, तो फिर वो शुहदा कहते हैं कि अगर अल्लाह तुमने देना है ना तो एक बार फिर दुनिया में भेज। क्या मतलब उनको दुनिया याद आती है? नहीं, कहते अल्लाह एक बार दुनिया में भेज और फिर तेरे रास्ते में गर्दन कटाए। जो लज्जत जिस्म से खून के कतरे गिरते वक्त तेरे रास्ते में कटते हुए आई थी, वो लज्जत आज भी मिस करते हैं। ये है ला तकूलु, और वल्लाह ही ये तो मौत के बाद बातें, अगर आपको दर्द लग जाए ना दीन का तो आपकी दुनिया की भी जिंदगी ऐसी है, फिर आप बेखौफ हो खतरा, फिर आपको कोई डिप्रेशन नहीं, दुनिया के खाने पीने पहनने ओढ़ने, जहां रात हुई सो गए, जो मिला खा लिया, ना मिला तो ना खाया, खा लिया तो खा लिया, यानी आपकी एक नई दुनिया बन जाती है जिसकी वजह से आप फिर अपनी ही सोचों में रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को ये सब मामला जो है वो वहां दिखाए जाते हैं, जिस्म के साथ कुछ भी हो। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वो इस तरह से हालात पैदा किए जाते हैं तो फिर हम उनको जिंदा समझे? नहीं, तुम नहीं जानते, वाला की ला तशरून, बजाहर शहीद मरता है, उसकी बीवी बेवा होती है, वो दूसरी शादी कर सकती है अपनी इद्दत गुजारने के बाद, उसके बच्चे यतीम होंगे। बाज लोगों ने इस बात से गलत दलाइल लेकर कि देखो शहीद जिंदा है, उनकी कब्रों पे जाके मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह के बंदो बात को समझा करो, जो बंदा कब्र में चला गया, जो जन्नत में चला गया, वो वहां से तुम्हें यहाँ औलाद और बेटे बेटियां देने के आएगा, तो यहाँ से फिर अकीदे की भी इसलाह जरूरी है कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए कि मरने वाला अल्लाह करे इस दुनिया के नाते से मरे लेकिन आखरत के नाते से वो जिंदा है, और वो वहां अल्लाह ताला के पास से ये सारी चीजों को लेके आ रहा है। बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं, और एक वाक्य तो बिल्कुल सहाबा का आया था कि इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो आपको सूरत आल इमरान में जब ये आयतें पढ़ाएंगे तो सुना दूंगी कि किस तरह शुहदा की रूहें ख्वाब में आके उस वक्त हुक्मरान और जो उलमा इकराम थे उनको बता रही थी कि हमारी कब्रों में पानी आ रहा है, और फिर जब बार बार ऐसा हुआ और जाके वाकई वो जगह खोदी थी तो वहां पानी आ रहा था, और फिर सऊदी हुकूमत ने पूरे इख्तमाम से उनकी कब्रों को खुलवा के उनकी लाशों को निकलवा के दूसरी जगह दफन किया, और कहते हैं जब उनको निकाला गया तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद उनके कफन थे, शहीद की को मट्टी नहीं खाती, उसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल वैसी रहती है जैसे कि वो होता है। इसी अल्लाह की कदरदानी है, वो कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, वो बहुत कदरदान है। आज उसके रास्ते में जरा थोड़ा सा आप निकल के तो देखें कदर की हद कर देगा, लेकिन हमें कुछ दुनिया छोड़े तो फिर है, हमने तो वो मजा भी चखा ही नहीं जो मामला अल्लाह के मौजूद है। बाकी इस पे बहुत लंबी बहस है जिसकी इस वक्त हमें जरूरत नहीं कि अंबिया के साथ कब्रों में क्या हो रहा है, बस ने इसी से कई गलत किस्म की बातें निकाल ली कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है, नाउजुबिल्ला उनकी बीवियां उन पे पेश की जाती हैं और वो हमारे दुख सुनते हैं और सुख सुनते हैं, तो बस बात जितनी मौजूद है उतने पे रहते हुए अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस बात का गम लगा दे कि हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने की ख्वाहिश रख लें। इसीलिए आगे फरमाया वल नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुस वस्समरात वबशिर साबिरीन, और अलबत्ता जरूर जरूर हम तुमको आजमाएंगे। श्योर शॉट इंग्लिश में आप लिख लें, इसके तर्जमे में श्योर शॉट इट विल हैपन, ये हो ही नहीं सकता कि तुम अल्लाह के दीन का नाम लो और तुम्हें आजमाया ना जाए। ये मसाइबे खमसा है, पांच किस्म की मुसीबतों का तذکرہ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखा है कि ये तो होके रहेगा। तुम्हें अल्लाह का दीन अगर प्यारा है तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें इसके मामले में अपने ऊपर फिक्र करनी पड़ेगी। किस तरह से? पहली चीज देखिए बिशयन, कुछ हद तक ये मुराद है कि थोड़ा सा चाहे, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा, हर किस्म के हालात तो आएंगे ही, लेकिन कैसे किस हद तक होंगे? मिनल खौफ, खौफ आएगा। हम सहाबा के ऊपर देखें तो खौफ बहुत था दीन के इब्तदाई दिनों में, नमाजें तक नहीं पढ़ सकते थे, मदीना में आने के बाद हमले का इतना खतरा था कि अल्लाह के नबी ने एक दिन कहा कि कोई है जो आज की रात मेरे घर का पहरा दे और मैं सुकून से सोच सकूं, हथियार बांध के सोते थे सहाबा इकराम। आज मैं और आप अपने ऊपर ले लीजिए, अगर दीन की तरफ बढ़ते हुए कदम है तो खौफ है, पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, हस्बैंड प्रेशर, सास प्रेशर, किड्स प्रेशर, अब तो बच्चे प्रेशर डालते हैं, अम्मी आपको क्या हो गया, अम्मियाँ बदलती जा रही हैं, अम्मियाँ बहुत क्रैंकी हो गई हैं। तो जितना आप दीन पे आएंगे लोग आपको खौफजदा कराएंगे, और सबसे बड़ा खौफ क्या है कि जी शौहर दूसरी शादियां कर लें। तब गिरते हुए आंसू मुझे एक लड़की के याद आ रहे हैं कि जिसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, और रो के क्या कह रही थी कि मुझे लोगों ने कहा तुमने सर पे दुपट्टा लेना शुरू कर दिया ना तो अब तुम्हारा शौहर जो है ना वो बिगड़ा बिगड़ा रहता है, तो मैंने तो साजा उसके लिए पेंटे भी पहन ली थी, उसने फिर भी दूसरी शादी कर ली। तो मैंने कहा आपको आज खुद ही समझ आ गई अपनी बात का जवाब। हम क्या सोचते हैं दीन पे आएंगे घर टूटे तलाक के, सास नाराज ससुर नाराज, गोया के दीन से दूर लोगों से तो सब बड़े ही खुश हैं, जो बीवियां दीन से दूर है उनके मियाँ तो बहुत उनकी कदर करते हैं ना, जाके देखिए तो सही दीन से दूर सोसाइटीज और उन घरों के अंदर गंदगी कितनी है। तो लेकिन याद रखिए खौफ तो है, लोग आपको डराएंगे, आप कुरान पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता आपको कुछ डराता है कि नहीं डराता, लेकिन लोग डराएंगे आपको भी आगे जाके, अभी तो नया नया शौक आपका भी बड़ा है ना, लोग डराएंगे देख लो हाय मोटी हो गई हो, हाय बैठ गई हो, वेट गेन कर लिया, फिर तुम्हारा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा, यानी सब मोटी औरतों के मियाँ ने दूसरी शादियां कर ली है, और जो दुबली पतली हैं उनके मियाँ तो बहुत खुश हैं। धोखा, वल्लाह ही धोखा। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम दीन को सौतेले बच्चे की तरह रखते हैं घर में, कोई चीज टूटी उस पर नाम लगा दिया, कोई चीज नुकसान होगा उस पर, और कुछ नहीं होगा तो वो कहेंगे ये आपके मियाँ को जॉब ही नहीं मिल रही, अब आप उसको साथ ही नहीं देते, बेचारे डिप्रेस है। हाँ देखो उन्होंने सिगरेट शुरू कर दी ना इसलिए कि आपने कोर्स शुरू कर दिया, आप उनका दुख सुख नहीं सुनती, वो बेचारे बैठ के फिल्में देखते रहते हैं। किसी के पास आएंगे अच्छा जी आप तो कुरान पढ़ी आपको कहे तो आपके जवान बच्चे इस वक्त घर में क्या देख रहे हैं, उनको टीवी पे लगा दिया, अपने बच्चे तुम्हारे खराब हो रहे हैं तो दूसरे के बच्चों की सलाह की फिक्रों में लगे, इतना लोग आपको डराएंगे यकीन करें आपको खुद खौफ पैदा हो जाएगा कि हम गलत रास्ते पे हैं। लेकिन समझ लें कि ये पहला संगे मील है, ये पांच साइन बोर्ड है, जैसे आप यहाँ से लंदन से मैनचेस्टर जाते हैं तो कम से कम पांच शहर बीच में कोई आते ही होंगे ना छोटे बड़े, पहला आ जाए तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सही रास्ते पे, दूसरा तीसरा है। तो अल्लाह के रास्ते में चलने चलाने वालों का पहला संगमी खौफ है, ये खौफ लोग आपको दिलाएंगे। दूसरा वलजू, भूख, अल्लाह अकबर हमने तो क्या भूख सहनी है अल्लाह के रास्ते में, हमारी तो ब्रेक ही थोड़ी सी लेट होती है ना, दिल को कुछ होता है, प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, वॉशरूम में जाना होता नहीं उठते। सहाबा का हाल क्या था, अबू हजरत अल्लाह अकबर अबू हुरैरा बेहोश हो जाते थे, सहाबे सुफा में से थे यानी हॉस्टल में रहते थे अल्लाह के नबी के दौर में, और सिर्फ इसलिए आपकी महफिल से उठ के बाहर नहीं जाते थे कुछ खाने पीने कमाने, कि उस आपकी गैर मौजूदगी में अल्लाह के नबी कोई बात कहे तो मैं उससे महरूम ना रह जाऊं। हालांकि दूसरे भी बता सकते थे, कहते थे नहीं मैं डायरेक्ट सुन के आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता हूँ। और बेहोश ऐसे होते हैं, लोग कहते थे कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ा है, कहते थे मेरे अंदर इतनी जरूरत नहीं होती थी मैं कह सकूं कि लोगों मैं बीमार नहीं हूं, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी हुई है। इस तरह से कभी भूख सहनी पड़ती है, हमने कहा सही है, हमारा तो हाल ही बहुत कमजोर है। हम तो एक वक्त का खाना जरा अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाए यहाँ आने की वजह से तो उसमें शर्मसार फिरते हैं, मत शर्मिंदा है अपने बच्चों से और मत शर्मसार है अपने शोहरों से, अगर आप लंच में उनको गरम गरम रोटी 1 बजे नहीं खिला सकती जो पहले खिलाती थी, फखर करें, उनको बताएं कि इस दीन की बरकत कितनी आनी है घर में और आ रही है, ये गरम रोटी तो आपको कोई भी होटल वाला भी खिला देगा लेकिन ये दीन किसने आपको देना है। हम कमजोर होते हैं, हमारे घर वाले और कमजोर होते हैं, फिर नक्स मिनल अमवाल, माल तो कम होंगे, सेहतमंद जिस्म है, अकलमंद है, दिमाग है, जॉब करें, हम सब भी निकल जाए ना जितने साथी यहाँ बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कमाई हमारे घरों में आएगी, अकल भी बड़ी दी है अल्लाह ने हम सबको, हम कमाएं तो हम 100 के 1000 कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको जूते की नोक पे रखा, हमें नहीं चाहिए माल, अल्लाह हमारे शोहरों को सलामत रखे, कुछ ना कुछ कमी तो हुई। सहाबा किराम क्या कमा नहीं सकते थे? क्या अबू हुरैरा कहानी सुनाई तो क्या वो बिजनेस माइंडेड नहीं थे? अबू बकर सिद्दीक बिजनेस माइंडेड नहीं थे? मक्का के अमीर तरीन ताजरों में थे अबू बकर? कोई एक जंग बता दें कि अबू बकर ने कहा सॉरी अल्लाह के नबी जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, एक तरफ यूं रख के फेंकते थे जैसे बंदा जूता बदल के आगे चल पड़े, नो क्वेश्चन, फारिग होते थे तो काम करते थे, नहीं होते थे तो चल पड़ते थे। इसी तरह हम अपने असलाफ को पढ़ते हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात है गालिबन, मेरे जहन में अगर गलत ना आए, इमाम बुखारी के उस्तादों में थे, अपने साल के तीन तीन हिस्से करते थे, चार चार महीनों के होंगे, 4 महीने खूब कमाते हैं, सीजन जिसको आप कहते हैं उसमें पैसा जमा कर लेते हैं, फिर एक हिस्सा जो सेकंड हिस्सा था उसको इल्म की नश, उसमें इल्म सीखते सिखाते इल्मी काम करते, और तीसरा हिस्सा था जो प्रैक्टिकली जाके दीन फैलाते और जिहाद करना पड़ता था जिहाद करते, और इतना माल था उनके पास कि अपने साथ जो लोगों को लेके जाते थे उनको ये पता होता था कि हम अपने अपने खर्चे पे जा रहे हैं, ले लेते थे सबसे खर्चा, जब कर करा के सफर वापस आते उन सबको उनके पैसे फिर वापस कर देते, जाओ तुम्हारा खर्चा मेरे पे। आप क्या सोचते हैं दीन वाले भूखे नंगे होते हैं? लोगों को लगते तो भूखे नंगे हैं क्योंकि दिखता ही नहीं है ना इनका सोर्स क्या है, इनको कहाँ से मिलना। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे रास्ते में एक दफा अपना सब कुछ छोड़ के तो देखो। आप देखिए, आपने अबू बकर सिद्दीक का सुना ना, तबूक में पूरा घर छोड़ दिया, तो क्या तबूक के बाद अबू बकर जिंदा नहीं रहे? अल्हम्दुलिल्लाह रहे, तबूक हुई थी सन 9 हिजरी में, 10 11 आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, फिर उसके बाद 2 साल अबू बकर के, कमो बेश भी आप कर लेना कम से कम भी तो तबूक के बाद आप सल्लम 3 साढ़े 3 साल जिंदा रहे, कौन सिखाया होगा, घर तो सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया, आप एक दफा दे के तो देखें अल्लाह आपको उससे ज्यादा नया दे देता है, ये बात हमें समझ कोई नहीं आती, इसीलिए 100 साल पुरानी भी चीजें घरों में सजा के रखी है, देने का हौसला ही नहीं पड़ता, वो चीजें जो कभी नहीं खोली देखी हम उनको ही संभालते रहते हैं, वो बिस्तरे जिन पर कभी नहीं सोए, हर साल धूप सवार गर्मी लगा देंगे लेकिन उसको किसी गरीबों को नहीं देंगे, जब दिल में माल इस तरह कोलेस्ट्रोल की तरह भरा होता है ना फिर नहीं मोहब्बत आती दीन की, अल्लाह कहते हैं तुम दो नफ्स में नरमवाल देना पड़ेगा, खड़ी फसलें तैयार होती थी तबूक के लिए गए, सर्दी थी सख्त सर्दी थी अहजाब में निकले, गर्मी उनको नहीं रोकती थी, सर्द उनको नहीं रोकती थी, सेहत उनको नहीं रोकती थी, बीमारी उनको नहीं रोकती थी, तो अल्लाह कहते फिर मैं उनकी कदर क्यों ना करूं, और सबसे बढ़ के वाला अनफुस जहां नफ्स लगाने पड़ते हैं सबसे मुश्किल, इसके दो मुख्तलिफ मानी है, यानी तुम्हारा कोई अजीज फौत हो जाएगा कोई प्यारा चला जाता है, वो भी झट होते हैं, लेकिन शहादत हक में जो नफ्स लगता है ना, वो सबसे पहले तो अना लगती है, आई माई सेल्फ मी, सबसे पहले जो दीन चोट लगाता है ना, वो हमारी अना पे लगाता है। हम तो बाहर चौधरी साहब थे, इस कमरे में तो हमें कोई हिलने नहीं देता, बाहर तो हम रो करते थे, कुर्सी मेज पे बैठ जाते थे और लोगों के ऊपर अपनी बात मनवाते थे, यहाँ हमें मनवानी पड़ती है, बोलने भी नहीं देते, बात पूछे जवाब भी नहीं देते, कहते हैं लिख के दे दो, नफ्स कटता। लेकिन वो फिर ऐसे जैसे आप देखे अना पे चोट पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, यूं फिर बंदा पिसता है, और वो सारा अंदर से जो खुमार होता है ना अपनी बड़ाई को निकलता है, और इंसान पे चिचक के बैठ जाता है, कहते हैं अल्लाह मैं कुछ नहीं, या कना बुदू है या कना सईद, ये नफ्स पे चोट पड़ती है। फिर नफ्स पे चोट जिसमें बैठना, चलना, फिरना, खाने में कमी, पीने में, यानी जिस्म की राहत के साथ कभी भी इल्म नहीं मिलता। ये बड़े हमारे कहा करते थे, जिस्म की राहत के साथ कभी इल्म नहीं तुम्हें मिलेगा। एक काफी दिल से शुरू से ही इरादा है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें हम कर ही नहीं पा रहे ना। एक पूरा टॉपिक मेरे पास तैयार है कि हमारे असलाफ को इल्म के रास्ते में क्या क्या मुश्किल पेश है, आप सुने ना तो यकीन करें कि आंखों से छमछम हमारे आंसू गिरे, और साथ ही साथ शर्मिंदगी भी हो कि हम क्या कितने पानी में, पूरे पूरे घर बेच देते थे। इमाम बुखारी ने अपना पूरा घर बेच दिया अपने इल्म के सफर के खर्चों के लिए। एक साहब मुहद्दिस थे, वो जब निकले अपने घर से तो इतना गर्मी का था कि पाँव के नीचे के तलवे जो थे ना फट गए, खून निकल आया। एक थे वो जिनको कहते हैं कि जब मैं इल्म की तलाश में निकला तो मुझे गर्मी इतनी सख्त हो गई कि मुझे सुर्ख रंग का पेशाब आता था, जिसको यरकान कह लें। नफ्स लगता है, अगर आपकी यहाँ कमर थकती है ना थोड़ी देर बैठने से, कदम भारी हो जाते हैं, तो कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे रास्ते में मेरा नफ्स लग रहा है, मेरी जान लग रही है, तू इसको मोटा कर चुकी है, मैं इतना खिला पिला के अब इसको अपने रास्ते में लगा दे, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इंसान की कितनी कदर करता है। और फिर आप देखिए कि अगली चीज, बस हमारा फलों में कमी। मदीना के लोग किसान थे, खड़ी फसलें छोड़ के उनको अल्लाह के रास्तों में निकलना पड़ा तबूक में, अल्लाह कहता ये तो होंगे फल कम होंगे तुम्हारे, लेकिन वबशरे साबरीन, खुशखबरियां दे दो सब्र करने वालों को। ये सब्र करने वाले कौन होते हैं, रोते धोते आंसू पोंछते, क्या बताएं तुम्हें अपना हाल, कितने दुखी हैं, हाय कितना काम है, हाय कितने टेस्ट, हाय कितनी तैयारियां, कितने घंटे पढ़ना होता है, नेवर, ये साबिर नहीं है। अब यहां से आपको और मुझे साबिर की तारीफ दिखेगी, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, ये वो लोग हैं जब इनको मुसीबत पहुंचती है, किसकी मुसीबत, दीन के रास्ते की, इस वक्त सारा सबर ही सबक ही दीन का सबक है, मुसीबत पहुंची कोई भी पहुंच गई, कालू इन्ना लिल्लाह, सबसे पहले तो कहते हैं अल्लाह के, ये सबर का वो दर्जा है जिससे मैंने बात शुरू की थी आज के सबक की, कि सबसे पहला दर्जा के दिल में अल्लाह से राजी रहे, कोई बात नहीं, इन्ना लिल्लाह, अल्लाह मेरा, मैं अल्लाह क्यों, मेरा अल्लाह मेरे बारे में जो चाहे, ये पहला दर्जा है। दुख तकलीफ और मुसीबत के वक्त बंदे का दिल अल्लाह से जुड़ा रहे, ये सब्र का पहला दर्जा है। फिर उसका अगला दर्जा आता है कि जुबान पे शिकवा ना आए, हाय क्या कर दिया, क्या सुनाए, किधर है, कुछ लोगों का वो हाल पूछ ले बस, फिर आपका हाल खराब है, उन्होंने अपनी दर्दें शुरू करनी है, घुटनों से लेके टांगों से लेके सर पूरे जिस्म के एक जोड़ को गिनवा देंगे, बस क्या आप कहते तो सब्र करते हैं, इतनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, हाय क्या बताएं तुम्हें। याद रखिए साबिर वो है कि जो दुख पे के इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के, भाई ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम क्यों बोलते हो। एक सहाबी थे गालिबन या कोई बड़े आलिम थे, तो बीमार हुए, कोई उनके पास गया, अब देख रहे कि बीमार है, कहते सुनाइए क्या हाल है, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, फिर पूछते हैं, फिर दो तीन बार बोले सुना क्या हाल है कैसा, कहने लगे जो बात मैं मुंह पे नहीं लाना चाहता मुझसे क्यों सुनना चाहते हो, कि तुम मेरा हाल इतना क्यों पूछते हो कि मैं कह दूं कि बड़ा दर्द है, बड़ी चोट है, बड़ी तकलीफ है। और एक साहबी बीमार थे और तकलीफ की वजह से मुझसे इस निकल गई 7 दिन पास, नबी ने कहा कि अगर तुम इसकी बताया अगर बिस्मिल्लाह कह देते तो फरिश्ते तुमको उठा लेते, इतनी तकलीफ, और फिर ये नहीं कह सकते कि हाय दर्द है, हाय चोट है, क्योंकि जुबान पे लफ्ज क्या, इन्ना लिल्लाह, मेरा रब मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, और वह इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे उसकी तरफ पलटना, क्या हुआ अगर मेरी कोई प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में चली गई, तो मैं अल्लाह की तरफ ना हूँ। आप देखिए जिस तरफ आपकी प्यारी चीजें होती है ना, वहां दिल बहुत लगता है। किसी जगह आपको अपना दिल लगाना है ना, वहां अपना कोई सामान भेजना है। चार कपड़े ही आपके कहीं पड़े हो ना, तो आपका दिल दिमाग बार बार उधर जाएगा, मेरी चीजें उधर पड़ी उधर पड़ी। और जहां से चीजें उठती हैं वहां से दिल भी उठ जाता है। कभी पलट के भी नहीं बंदा उन जगहों को देखता जिसके बगैर लगता है कि हम रह ही नहीं सकते हैं। ये नुस्खा है कि तुम अल्लाह की तरफ जाना चाहते हो, उससे पहले तुम अपनी चीजें अल्लाह की तरफ भेज दो। एक शख्स थे तो उन्होंने एक आलिम से कहा कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, खौफ में आ जाता हूँ, जैसे आप कहें कि पैनिक हो जाता हूँ, आज के दौर का खूबसूरत लफ्ज। क्या करूं? उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ चीजें पसंद है, कोई तुम्हारी मनपसंद चीजें? उन्होंने कहा, कहने लगे एक-एक करके उसको आगे भेज दो, अल्लाह के रास्ते में दे दो। क्यों? कहा जहां बंदे की मनपसंद चीजें होती है ना, वहां जाने को दिल जाता है। जब तुम अपनी पसंद की चीजें वहां पहुंचा चुके होगे तो फिर तुम्हें मौत का सुन के खौफ नहीं आएगा। इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा इस जुमले पे गौर कीजिए, इन्ना लिल्लाह जमा का लफ्ज है। मैं अक्सर इसको अपनी आसानी के लिए वाहिद में पढ़ती हूँ, इन्नी लिल्लाह, मैं अल्लाह की हूँ। लिखिए जरा इसको। जब आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह की हूँ, तो क्या आपको इसके लिए मौत का इंतजार है, अपनी या किसी की? ये जुमला अमूमन हम अपने प्यारों की मौत से जोड़ देते हैं। अमूमन ये जुमला बोले कोई तो हम सोच लेते हैं अल्लाह खैर करे किसी के मरने की खबर आ गई है। फोन पे बात करते हुए अगर कोई ये जुमला बोले तो भी यही फीलिंग आती है। लेकिन असल में ये जुमला बंदे मोमिन की जिंदगी भर उसकी जुबान पे रहता है। क्या हाँ, कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत अल अनाम के आखिरी आयत है कि कह दीजिए बेशक मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। बंदे मोमिन जिंदगी भर अल्लाह का होता है और आखरत में मौत की सूरत में उसका हतमी ऐलान कर देता है। उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा। ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से इनायतें हैं, रहमतें हैं। उलाइका हुमुल मुहतदून। और यही है हिदायत पाए हुए लोग। नोट कीजिए, दुख के वक्त पे खुद को अल्लाह का कहना और अल्लाह की तरफ जाने का इकरार करना। अल्लाह इस जुमले पे तीन रहमतें दे रहा है, सलवात, रहमा और मुहतदून, सर्टिफिकेट्स हैं। ये कौन सी हिदायत है? बड़ी गहरी बात है अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर कर सकें। हम दुनिया में सोचते हैं हिदायत उसको मिलती है जो किताब पढ़ता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जालिकल किताब ला रैब फी। इसी को कहते हैं ना, जैसे अब इस वक्त हम सब भी तो कुरान पढ़ने बैठे हैं तो हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह किनको कह रहे हैं मुहतदीन? जो दुख सुख में अल्लाह के फैसलों पे राजी रहते हैं। असल में ये किताब पढ़ने का आखिरी जो मुद्दा है ना, जो उसका आखिरी नतीजा था कि या कनाबुदु व या कनस्ताईन, उसकी तरफ इशारा है कि कुरान पढ़ के हिदायत लेनी है या दुख सुख में अल्लाह की रजा पे राजी होकर हिदायत लेनी है। हिदायत तब मिलेगी जब अल्लाह के फैसलों पे राजी हो। देखिए ये दुनिया जन्नत नहीं है, यहाँ हर एक को अपनी मर्जी का नहीं मिलेगा। हत्ता के सब कुछ मिलने वालों के पास भी हर चीज अपनी मर्जी की नहीं होती। और कुछ नहीं तो बेटा है तो बेटी की ख्वाहिश है, बेटी नहीं तो बेटा है, बेटे हो जाए तो बेटियां नहीं, बेटे बेटियां दोनों भी हो जाएंगे तो बच्चे नहीं, अच्छे हैं तो शक्ल अच्छी नहीं, रंग जरा और गोरा होना चाहिए था, कद जरा और लंबा होना चाहिए था। आप देखेंगे इस दुनिया की खुशियों में भी खुशी नहीं है। सोने जैसी चीजें मिल जाए आप उस सोने के अंदर फिर कहोगे नहीं इसमें नग जरूर होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल है लेकिन खूबसूरत तो लगते हैं ना, फर्क होता है ना। असल खुशी जन्नत में मिलेगी। इस दुनिया की चीज ही नहीं है खुशी। उसको पाने का एक ही तरीका है कि अल्लाह की रजा पे राजी रह जाए। मुस्नद अहमद की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को कोई रंज या मुसीबत पहुंचे, पहुंचती है ना, और इस पर ज्यादा वक्त गुजर जाए, यानी ये नहीं कि आज पहुंचे, साल, 10 साल, 15 साल पहले, फिर उसको किसी दिन वो चीज याद आ जाए, वो प्यारा याद आ गया, माँ याद आ गई, बाप याद आ गया, वो बच्चा याद आ गया जो गोद से चला गया, तो वो फिर कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो मुसीबत के वक्त सब्र करने का उसको अजर मिला था, अल्लाह ताला उसको वही अजर देगा। गोया कि ये ने अजर को बढ़ाने वाला जुमला है, जब कोई प्यारा याद आए तो उस वक्त जुमला बोले। इब्ने माजा की एक रिवायत है अबू सनान रहमहुल्ला से, कहते हैं कि मैंने अपने एक बच्चे को दफन किया, अभी मैं इसकी कब्र से बाहर ना निकला था यानी दफना कर, कि अबू तलखा खौलानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला और कहा, सुनो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। देखिए बच्चा मरा है, उसको दफना रहे हैं और सहाबी कह रहे हैं मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। कैसी बुरी बात है, हम कहते हैं कोई वक्त है खुशखबरियाँ सुनाने का। खैर मैंने कहा, कहते मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से सुना कि अल्लाह ताला मलकुल मौत से दरियाफ्त करता है, अल्लाह को सब कुछ पता है लेकिन हुज्जत तमाम करने के लिए क्या पूछता है मौत के फरिश्ते से, कि तूने मेरे बंदे की आंखों की ठंडक और उसका कलेजे का टुकड़ा छीन लिया, यानी बच्चे की तरह बेचारा, तो बताओ कि उस बंदे ने क्या कहा, यानी जब उसको अपने बच्चे की मौत की खबर मिली तो क्या कहा। तो फरिश्ता जवाब देता है कि अल्लाह तेरी तारीफ, उस बंदे ने तेरी तारीफ की कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुभान, और आखिर में इन्ना लिल्लाह पढ़ा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए जन्नत में घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो, कि मेरे बंदे ने दुख के वक्त मेरी तारीफ की और अब मैं इसको वो घर दूंगा। इतना कदरदान है। उलाइक अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइक हुमुल मुहतदून। अल्लाह कभी आपकी ना कदरी नहीं करता। हमारे लिए इन सारी बातों में क्या है कि हर वक्त तैयार है, दुख तकलीफें आए तो खुशियां मनाएं, ठीक रास्ते पे हैं, कबूलियत का दर्जा है, अल्लाह ने कबूल कर लिया, और उस वक्त दुनिया में लोगों के सामने रोना धोना शिकवे के लिए नहीं करने, दिल में अल्लाह से नाराज नहीं होना, और काम जो नेकियों के कर रहे थे उनको छोड़ना नहीं है, आप देखेंगे कि आपका दिल जिंदा होगा। हदीस में तो यहां तक दुआ है ना, कुरान में तो यहां तक है ना, हदीस में इससे ऊपर है थोड़ी सी दुआ अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी के नाते से हमें मिलती है। अव्वल हिजरत करने वाला जोड़ा था अबू सलमा और उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी से जो सीखते थे ना घर आके उम्मे सलमा से शेयर करते थे। एक दिन आए और कहा आज अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई है कि जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो उस वक्त कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लुकनी खैरा मिनहा, दो तीन लफ्जों के फर्क से ये कई जगह मिलती है, हसन मुस्लिम में भी मौजूद है, कि अल्लाह मुझे अजर दे उस मुसीबत में जिसमें तूने मुझे मुबतला किया और मुझे इसका बेहतरीन बदला दे। फरमाए कि आपने कहा है कि जो दुख में ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ना सिर्फ उसको आखिरत में अजर देगा बल्कि दुनिया में इस चीज का नेमल बदल ऑल्टरनेट देगा। अल्लाह का करना देखिए कि चंद दिन के बाद अबू सलमा का इंतकाल हो गया और बीवी ने दुआ उन्हीं से सीख ली और इज्जत के दौरान यही दुआ मांग रही है, और दिल में क्या सोचती है, अबू सलमा जैसा सहाबी मुझे कहाँ मिलना है, इतना नेक अव्वल मुहाजिर, क्योंकि वो औरतें ये नहीं सोचती थी कि अब मेरी भी जिंदगी इसके साथ सती हो गई, बस अब मैं नहीं दोबारा शादी कर सकती, उनकी सोच ये नहीं थी, ये तो हमारी जाहिलाना सोच है, कोई जवानी में बेवा हो जाए सारी जिंदगी उसको उसी सूली पे लटका देते हैं। खैर इज्जत खत्म हुई तो दरवाजा नॉक होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौम सलमा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं आपको निकाह का पैगाम दूँ। अल्लाह के नबी मुझे, हाँ आपको, अल्लाह के नबी मैं बड़ी उम्र की औरत हूँ, तो कहा मेरी भी उम्र कुछ कम नहीं है, कहा नहीं नहीं मेरे बच्चे हैं, कहा आपके बच्चे मेरे बच्चे होंगे, हाँ नहीं अल्लाह के नबी मेरे मिजाज में गुस्सा है, ऐसा ना हो कि शौहर बीवी के नाते मैं कभी आपकी कदर ना करूं, कोई गुस्से में बात कहूँ और नबूवत के मुकाम पर चोट पड़े, कहा मैं अल्लाह से दुआ करूँ अल्लाह तुम्हारा गुस्सा कम कर दे, और इस तरह हजरत उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गए। क्यों, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लुकनी खैरा मिनहा, हमारा यकीन कोई नहीं इन दुआओं पर, वैसे मांगते भी तो कहते होना का है, अब ये कैसे होगा। असल बात ये कि इंसान यकीन रखे, आपका हार टूट जाता है ना, आप मांगे अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लुकनी खैरा मिनहा, आपको अल्लाह उससे बेहतरीन देगा और आपका दिल कहेगा कि ये मुझे उसके बदले में मिला, चोरी हो गई, जेवर चला गया, बाप फौत हो गया, भाई चला गया, मांगिए आपका दिल बताएगा कि अल्लाह दुनिया में आपको उसके बदले में कैसी खूबसूरत नेमतें देता है। असल बात अल्लाह के वादों पे यकीन है। बातें सबर की हो रही थी, अब हम सबर की एक अमली तस्वीर, बीबी हाजरा और इस्माइल, शहादते हक के, शहादते हक के रास्ते की सबर पढ़ रहे हैं ना, तो अल्लाह आप मेरे और आपके सामने एक रोल मॉडल लाता है, एक पूरे घराने का सबर, बुड्ढे इब्राहिम, बूढ़ी हाजरा और मासूम इस्माइल का सबर, और मुझे और आपको सिखाता है कि देखो इस शहादते हक के रास्ते में तुम अकेले नहीं, अपने घर वालों को भी लेकर चलोगे, फिर अल्लाह के घर आबाद होंगे। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। फमन हज्जल बैत, जो कोई बैतुल्ला का हज करे, अवेत मरो या उमरा करे, फला जुनाह अलैहि, फिर इस पर इस बात में कोई गुना नहीं, कहीं ये तवफ भी माँ कि वो इन दोनों का तवाफ करे, दोनों से मुराद सफा और मरवा। हाँ वमन तवा खैरा, पता है कि ये लंबा होता है तवाफ, इसलिए जो कोई खुशी के साथ खैर करेगा तो फइन अल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला कदरदान भी है और जानने वाला है। सफा मरवा की बात आती है तो बीबी हाजरा की बात आती है, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बचपन से ये बातें हम सुनते ही आ रहे हैं कि बीबी हाजरा और नन्हे इस्माइल को अल्लाह के नबी इब्राहिम बिल्कुल बंजर वादी में छोड़ आए थे। सब मारूफ कहानी है। फिर बच्चा प्यासा था, फिर माँ उस बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही थी, इस तरह से भागती थी कि दूर कहीं कोई काफला दिखे। जब सफा और मरवा दो पहाड़ियां, उनके बीच में थोड़ी सी प्लेन जगह थी, आजकल तो थोड़ी चेंज हो गई है ना, पहले बिल्कुल सफा मरवा और बीच में इस तरह एक डम सा था। जब वो ऊपर होती थी तो उनको बच्चा नहीं दिखता था, यानी ऊपर होती थी तो बच्चा दिखता था, तो आहिस्ता चलती थी, जब एक पहाड़ी से दूसरी के बीच में जाती तो बच्चा नहीं दिखता था, तो भागती थी। अल्लाह को उस माँ का सब्र और अल्लाह की रजा पे राजी रहना इतना बड़ा लगा कि क्यामत तक के मर्दों को भी उसके नक्शे कदम पे चला दिया। हज हो नहीं सकता, उमरा कबूल होगा नहीं, जब तक इस पे सफा और मरवा की सही न की जाए। ये है शाकिरन अलीमा, कदरदान। मैं और आप सिर्फ खुद निकल के आए हैं अभी अल्लाह के रास्ते में, और 4 घंटे के लिए कोई पहाड़ नहीं ढा दिया हमने अभी। जिस दिन हम अपने बच्चों और शौहरों को साथ लेकर इस रास्ते में निकलेंगे, फिर अल्लाह के घर आबाद होंगे इन शहरों में और इन मुल्कों में, और फिर अल्लाह आपके नक्शे कदम पे चलाएगा दूसरों को। यहाँ सबर की अमली तस्वीर बताई जा रही है, वो भी बूढ़े थे, अगर आप बूढ़े हैं तो क्या हुआ, उनका भी मासूम बच्चा था, पहलोठी का बच्चा, गांव का बच्चा, 70-80 साल की उम्र में मिला हुआ बच्चा। रब्बी हबली मिन सालिहीन की दुआ का नतीजा, और अल्लाह कहते हैं मेरे रास्ते में का निकलो तो निकल पड़ो, आप जरा एक लम्हे के लिए खुद को इब्राहिम की जगह पे लाए। इतना इतनी मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ बच्चा, और अल्लाह कहते हैं जाओ इसको इसकी माँ के साथ दूर छोड़ो, क्या जुबान पे लफ्ज आते हैं, अल्लाह ये क्या, हाय मेरा बूढ़ा बच्चा, हाय मेरे बुढ़ापे की औलाद। हम तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जमा कर करके खजानों के अंदर भरते रहते हैं ना, फिर भी खौफ है कि पता नहीं इनका होगा क्या। इब्राहिम से अल्लाह ने उसका बच्चा मांग लिया, बीवी मांग ली, चले इब्राहिम तो नबी थे, क्या मुश्किल था। जरा हाजरा पे तो गौर कीजिए और अपने ऊपर ले, कोई आज अल्लाह के दीन का तकाजा हमें भी इस तरह घरों से निकाले और हमारे शौहर कह के चलो आओ इधर से हिजरत करके उधर चलते छोड़ो, तो हम क्या कहते। कहते हैं कि रास्ते में बीबी हाजरा पूछ रही थी आप हमें उधर क्यों लेके जा रहे हैं। अरे इब्राहिम खामोश, कुछ बता दीजिए क्यों लेके जा रहे हैं, खामोश। कहा अच्छा बस एक बात बता दें कि हमसे नाराज होके तो नहीं हमें छोड़ रहे। कहा नहीं। कहा आपको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। कहा जी अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने दिया है तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, और अल्लाह जाया नहीं करता। आप भी अपनी दुआ में ये दुआ शामिल कर लें कि अल्लाह हमें जाया ना करना, अगर आज तूने हमारे हाथों में ये कुरान दे ही दिया है, हमें इतनी दूर से इधर बुला ही लिया है, तो अल्लाह अब ये ना हो कि यहाँ आके फिर सो सो के चले जाए, और फिर जो घर में नहीं कर सकते थे वो यहाँ आजादी से करके चले जाए। जरूरी नहीं होता कि बंदा अल्लाह के रास्ते में निकले तो कामयाब हो जाए, जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए। और दूसरी बात, इधर सफा और मरवा के नाते में देखिए, तो सफा और मरवा दो पहाड़ थे। हुआ क्या कि पीछे से तो ये बीबी हाजरा की सुन्नत रही, अल्लाह ने उसको हज और उमरे का हिस्सा बना दिया, लेकिन जूं ही वक्त गुजरा तो अरबों में बुत परस्ती आई ना, तो तो उन्होंने क्या किया कि दो बुत लिए, एक का नाम था असाफ और एक का नाम था नायला। असल में ये लड़का लड़की थे, इन्होंने हरम की हदूद में जिना किया था, अल्लाह ताला ने उनको पत्थर का बना दिया। ये रिवायतें मिलती हैं हमें। पहले दौर के लोगों ने इबरत पकड़ने के लिए कि आज के बाद ये कोई काम ना करे, लड़के का बुत असाफ सफा पे और लड़की का बुत नायला मरवा पे डाल के रख दिया कि इबरत पकड़ो, खबरदार अगर हरम की हदूद में ये गुनाह किया। शुरू की नस्लें जो थी वो इबरत लेती रही। जाहिल मुआशरों का हाल क्या है कि वक्त के साथ उन्होंने इनको बुत बना के, ये बड़े तो पहुंचे हुए होंगे तभी हैं, उनका तबाह शुरू कर दिया। अब जब इस्लाम आया, अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल कर दी कि भाई तुम्हें सफा मरवा के करना है, तो सहाबा के दिल में खौफ आया कि अल्लाह के नबी ये तो शिर्क है, वहां तो बुतों की पूजा है। तो कहा कि फला जुनाह अलैहि, अब ला पे गौर कर ले, ये नहीं कहा कि गुनाह है बल्कि कहा गुनाह नहीं, मुराद ये है कि जो चीज असल में ठीक थी बीच में लोगों ने गड़बड़ कर दी, तो कहा नहीं, तुम असल को सामने रखते हुए सफा और मरवा की सही बीवी हाजरा के नक्शे कदम पे करोगे, तुम ये बुतों की शक्ल नहीं करोगे, ये मुराद है। यहां से आप इस्लाम का मिजाज भी देखें, चपकलश वाला नहीं है, क्लैशिंग नहीं है कि जो वो कहते हैं सब गलत कर दो, तुम अपनी ठीक चीज पे कायम रहो, वो खुद गलत चले जाएंगे। और कहा खुशी से किया करो, थका ना करो, अल्लाह शाकिरन अलीमा। और जब कभी अल्लाह आपको मौका दे, जब भी आप वहां सफा और मरवा की सही करें, तो बीबी हाजरा को ना भूलें। मैं तो वहां जब भी कभी अल्लाह मौका दे दे तो मैं सोचती हूँ कि बीबी हाजरा की वो जो दौड़ और प्यास थी ना, वो सिर्फ एक बच्चे इस्माइल के लिए नहीं थी, वो नस्लों की प्यास थी। कल जैसे भी छोटा इस्माइल प्यासा तरस रहा था ना, आज की नस्लें भी तरस रही हैं। आज की भी औरत को इसी तरह अल्लाह के हुक्म पे दौड़ लगाने की जरूरत है। फिर अल्लाह ताला आप देखिएगा किस तरह अपने घरों को आबाद करेगा। और ये मिन शाइरिल्लाह, ये शऊर देती है। वमन यौज़िन शाइरिल्लाह फइन्नहु मिन तक्वल कुलूब, सुरह आयत 32 में आता है कि जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करे तो ये दिल के तकवे की बात है। तो लिहाजा इन चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इसके ऊपर अपने आप को रखो। यहाँ से एक और बात पर चलती है कि नेकियां खुशी से किया करो, तो तब हुआ, ये नहीं कि कुमार बांध के सर पे खड़ा हो जाए फिर ही नेकी करनी है। नवाफिल की इसीलिए ज्यादा कदर है, एक चीज आपको मजबूर कर दिया जाता है आप सबने करना है, वो तो आप करेंगे, हमें क्या पता आप खुशी से कर रहे हैं कि दुख से कर रहे हैं, अंदर से दिल में क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि चुपके से दूसरों की नजरें बचा के आप अल्लाह के लिए वो काम कर देते हैं, ये तो तब हुआ है दिल की खुशी। और दुआ कीजिए कि दिल की खुशी बन जाए ये दिन। अब क्या खत्म होगी बात? नहीं, सबर की बात नहीं चल रही है ना, शहादत हक है इसके रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट। कुछ ऐसे दीनदार के दीन के वो मसले छुपा लेते हैं जिस पर सबर करना पड़ता है। अब इस तमहीद में आयत बंद लाइन सुनिए, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक जो लोग छुपा लेते हैं, अल्लाह जीना के नीचे लिख लीजिए दीन वाले उलमा, उलमा सू ही लिखेंगे तो बेहतर होगा। कौन? दीन वाले जो छुपा लेते हैं, मांजलना मिनल बैजीनाति वलहुदा, वो बातें जिनको हमने अपनी किताब में लोगों के लिए खोल के बयान किया था, मिम्बा दिमा बैयन्नाहु लिन्नास फिल किताब, यानी जिन बातों को हमने लोगों की हिदायत के लिए खोल खोल के किताब में बयान कर दिया था, लेकिन लोग उसको छुपा लेते हैं। क्यों छुपा लेते हैं? ताकि लोग उनसे खुश रहें, पॉपुलैरिटी का ग्राफ ना डाउन हो। कंट्रोवर्शियल क्या है कि सूद को भी हलाल कर लिया, कंट्रोवर्सी क्या है कि जिना को भी हलाल कर दिया, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कर दी और बातों को यूं लचक पचक के किया कि बेचारों को कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के भी नहीं समझ आती कि अब हम क्या करें। ये कर लो ठीक, ये ना कर लो ठीक, यानी हलत मलत कर दिया दीन को। अल्लाह ताला कहते हैं उलाइका यलअनहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, अपनी रहमत से दूर करता है। वयलअनहुमुल्लाइनून, और लानत भेजते हैं इन पे और भी लानत करने वाले। अल्लाह कैसे इन पे लानत करता है? कि अल्लाह के कलाम को छुपा लिया। देखिए मैं आपसे कुछ कहूँ कि जाके पीछे रिसेप्शन पे ये दो बातें क्या है, आप वहां जाके दो में से बस एक बात कह दें और एक छुपा दें जिसकी वजह से मेरी बात का असर ऑपोजिट जाए, मुझे पता चलेगा तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा कि बुरा? मैं अल्लाह को अच्छी कहूंगी, अल्लाह को तो इतना गुस्सा आता है उन दीनदारों पे जो सिर्फ ख्वाहिशों का गुलाम बनाने के लिए, लोगों की नजरों में अपने आप को इन रखने के लिए दीन को छुपा लेते हैं। पर आज के दौर का यही मसला है, बात तो दीन की हो रही है ना। जब लोग देखते हैं ना कि दीन की कुछ बातें आज के लाइफस्टाइल से टकराती हैं, गोरे कुछ और करते हैं, नॉन मुस्लिम कुछ और करते हैं, अब हम मुसलमान ये करेंगे तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे, दिस दैट, तो क्या करें, तो वो फिर क्या कहते हैं, आओ इसके अंदर कुछ इख्तलाफी बातें ढूंढते हैं। दीन की कुछ बातों में वाकई इख्तलाफी बातें मौजूद हैं, लेकिन लिख लें कि वो सिर्फ फरोई बातें हैं, साइड इश्यूज हैं। इबादत में थोड़ी थोड़ी बातें, मामलात में कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, लेकिन दीन के बेसिक अकायद और दीन के जो पिलर्स हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। मिसाल दे देती हूँ, सूद कुरान में मौजूद, आ गया पढ़ने ही वाले हैं इंशाल्लाह, तीसरे पारे में आएगा सूरह बकरा में, आप खुद देख लेंगे कितना खोल के अल्लाह ने तीन चार दलाइल दी है जिसमें लफ्ज हराम भी है, जिसमें क्या कुछ है। सीधी सी बात है, कुरान में आ गई, मान लो तौफीक मांगो कि अल्लाह तौफीक दे, फिर लोग ऐसे उलमा को ढूंढते हैं आप इस बारे में क्या कहते हैं। अब उलमा अपनी जान बचाने के लिए, कहीं गद्दी बचाने के लिए, कहीं शोहरत बचाने के लिए, हाँ इट्स अ कंट्रोवर्सी इशू, जब तुम वो न मान जल्ला, नतीजा क्या हुआ, लोग उनका नाम लेके सूद के काम करने शुरू हो जाते हैं। अब होगा क्या, आखरत में वो लोग जिन्होंने ऐसे लोगों के नरम फतवों की वजह से इन चीजों पे अमल किया था, कल वो क्या मत लानत करेंगे कि तो भाई इनके कहने पे हमने किया था, हमें क्या पता। और मिम बादी मा बैन ना हो, अल्लाह कहते हैं जो बातें हमने मैनिफेस्ट ट्रुथ की तरह क्लियर कट लोगों की फिल किताब, उसके बारे में दीन वालों से क्यों पूछते हो, कुरान से पढ़ो। तुम खुद किताब पढ़ते नहीं हो, दीनदारों के नाम पे कुछ ना कुछ करते हो, तो याद रखो अल्लाह की रहमतों से दूर हो गए। यहाँ से आपको दीन का मिजाज समझ आता है। हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे, एक ये आयत और एक और आयत आती है, ये कुरान में ना होती ना तो मैं लोगों को कभी कोई हदीस ना सुनाता, लेकिन अगर मैं अब नहीं सुनाऊंगा तो मैं छुपाने वालों में आ जाऊंगा। हदीस में आता है जिसको हक बात पता हो लेकिन लोगों के डर से छुपा ले, ऐसे ही हैंकी पैंकी, क्यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। कर चुके अब क्या करें, इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा कर ले मगर जो लोग, वसलहू और इस्लाह कर ले, वबैयनू और बयान करने लग जाए, जिन जुबानों से लोगों को लोरियां सुनाते थे, झूठ सच सुनाते थे, क्लियर करें कहीं मेरा शरह सदर हो गया, हक बात ये है, हलाल उबैन हराम उबैन, क्या अल्लाह ने हमें उलझे उलझे दीन पे पैदा करना था। आप बताइए, आपको अपनी उलझी हुई अलमारियां अच्छी लगती हैं, आपको अपने उलझे हुए ड्रॉज अच्छे लगते हैं, अपनी जिंदगी में तो हम इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि छोटी चीजें इकट्ठी, बड़ी चीजें अलग, चमचों की अलमारियां, ये फलां के खाने, तो अल्लाह ने एक ऐसा दीन भेज दिया जिस पे मैं और आप अमल नहीं कर सकते, और कल वो क्यामत के दिन हमें उस पर पकड़ ले, क्या आपका दिल मानता है। अल्लाह ने इतना क्लियर कट दीन दिया है, सिर्फ लोगों को वही चीज कंट्रावर्शियल लगती है जो ख्वाहिशों पे चोट पड़ती है, ये सब्र के एंगल में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, मुश्किल लगता है ना डोंट्स पे रुकना, सूद से रुकना से मुश्किल लगता है, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप से रुकना मुश्किल लगता है, कहा रुको फिर अल्लाह जब देगा, फरमाया फौलाए का तू अलैहि वाना तवाबुर रहीम, बस यही लोग हैं कि जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ और मैं खूब तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। कितनी उम्मीद है इसमें। अब आप कहेंगे कि हम इस आयत पे अमल कैसे करें, देखिए पहली बात है कि हम आप लिख रहे हैं, दूसरों को ना तंग करें। अभी आप के सामने, सामने कहते हैं सुनने वाले, आप खुद है, अभी आपका मेरा वो मुकाम नहीं कि हम रात जाते लोगों को फतवे दे दें, जो बात जहाँ सुनी आधा जुमला जाके आज सूद पे बताना शुरू हो जाए, नेवर डू दिस। पूरी तैयारी से अपने शरह सदर पे पहले खुद को अमल करें, अभी आपका वो मुकाम नहीं ना आपको इजाजत है घर जाके लोगों पे तनकीद शुरू कर दें, आप आधी बात करके अगले की आधी सुन के या तो खुद ही कायल होके आ जाएंगे या अगले से बात बिगाड़ के आ जाएंगे। सबसे पहले अपनी इसलाह करें, फिर दूसरों की फिक्र करें। कफरू, बेशक जो लोग मर गए ये हैं वो दुखी उन लोगों के जो शहादत हक को गालिब ना कर सके, इस दुनिया में दीन के तकाजों पर जिंदगी बसर ना कर सके, इनकार का रवैया। कफरू, कुफर के बड़े शेड हैं, अल्लाह को ना माना या अल्लाह के दीन को ना माना, अल्लाह के हुक्मों को ना माना, वह मातू और वो मर भी गए, वहम कुफार, जबकि वो कुफर पे थे, यानी कुफर की हालत में मर गए। उलाइक अलैहिम लानतुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वह नासी अजमाइन और सारे लोगों की। यह आयत क्या बता रही है कि जिसका सरीहन कुफर पे इनकार हुआ, सॉरी जिसका कुफर पे खात्मा हुआ, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, रबिया और इसी तरह के नाम, आप और मैं उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह कहते हैं अलाइक अलैहिमुल्लाना। कुफार के साथ हमदर्दी करनी है तो जिंदगी में करो, उनको दीन की तरफ बुला के हक की गवाहियां दो, इस पे सब्र करो, और अगर आपने उन पे रहम करना है तो उनको हिदायत की दुआ दो, इससे ज्यादा नहीं। जब वो दुनिया से चला गया तो अपने हाल पे अफसोस करो कि मैंने इसको पैगाम क्यों नहीं बचाया और ये कुफर पे मर गया, और कैसी जहन्नुम में जाएंगे, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें, ला युख़फ़्फ़ुन्हुम अल-अज़ाब, नहीं हल्का किया जाएगा उनसे अजाब, वला हुम युनज़रून, और ना उनको ढील दी जाएगी, यानी टेम्परेचर भी 320 से 120 नहीं किया जाएगा। एक होती है ड्यूरेशन और एक होता है टेम्परेचर, चिकन को कितने वक्त के लिए ओवन में रखना है और एक 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 कितनी हीट पे रखना है। अल्लाह कहते हैं फला युखफ ला युखफ, ना तो उनकी ड्यूरेशन कम की जाएगी कि 45 मिनट की बजाय उनको सिर्फ 10 मिनट जहन्नुम के तंदूर में डाल दिया जाए, और ना उनका टेम्परेचर लोअर करके कि चलो थोड़ा सा हल्का कर लें। और जहन्नुम कितनी गर्म है, रिवायात में आता है कि जहन्नुमियों को अगर जहन्नुम से निकाल कर इस दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो सुकून के साथ सो जाए, इतनी गर्म आग है जहन्नुम, कितना बड़ा करम है अल्लाह का कि अल्लाह तआला ने हमें नबी की उम्मती बनाया, और उससे भी बड़ा अल्लाह का एहसान कि उसने हमें किताब को पढ़ने वाला बना दिया। अब हम माने ना माने, चले ना चले, ये सारी बातें, और कुफर का यहाँ बात है तो इसको सिर्फ एक कुफर में ना रहे, छुपा ला, अल्लाह को ना माने, अल्लाह के मुकाम को छुपा लिया तो का फिर लिखने बल्कि आपको फायदा होगा कुफर के दर्जे, अल्लाह को ना माने उसको बड़ा ना माने तो का फिर दूसरी बात, अल्लाह को माने मगर इसके हुक्मों को ना माने, हिदायत पे अमल ना करे तो का फिर तीसरी बात, इसको तो माने कि अल्लाह भी बड़ा है और अल्लाह ने गाइडेंस दी लेकिन अमली तौर पे उस पर अमल ना करे, बात बात है, माने कि कुरान सुन्नत पे अमल करना चाहिए लेकिन ना करे। फिर उससे अगली बात, नबियों को ना माने, अल्लाह के एक नबी को या बाकी नबियों को ना माने वो भी काफिर। फिर अल्लाह ने नबियों के जरिए जो तालीमात दी, यानी आज के दौर में आप कहें अहदीस, सुन्नत, कुरान, अकायद, अखलाक, उसको ना माने, किसी को माने किसी को ना माने। और छठा दर्जा क्या होता है कि नजरिए के तौर पे सबको माने, जुबान पे कहता रहे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अमलन अल्लाह के हुक्मों को जानते बूझते छोड़े, कहता रहे हाँ सूद हराम है हराम है, अमली तौर पे कहे नहीं गुजारा नहीं होता गुजारा नहीं होता, करता रहे। ये सब रवैये बगावत के रवैये हैं, कुफर कहता है इस्लाम में इनको, कुफराने नेमत है, शुक्र के मुकाबले में ये लफ्ज आता है, ना दिल से अल्लाह का एहसान माना, ना जुबान से मानी, ना जवारेह से मानी, ऐसे बंदे को अल्लाह कहाँ फेंके फिर, आग ही इसका मुकद्दर है और हमेशा की आग, क्योंकि अगर इसको हमेशा की जिंदगी मिलती तो ये यही काम करता। तो जो बातें दिल को समझ आती है ना उसको बनवाए, अपना मुहासबा करें, मैं और आप ये सबक यकीन करें कि हम सबको अपना नहीं रखता, अल्लाह का बना देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सारे सबक का खुलासा यही है कि इस जिंदगी भर अल्लाह के दीन को बुलंद करते रहो, अपने इस 5 फुट के जिस्म से शुरू करो, बच्चे, घर, शौहर, आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द वालों के ऊपर, फिर माशरे में, सोसाइटी में, शहर में, फैलते फैलते मुल्क में, मुल्कों से दूसरे मुल्कों में, इस ग्लोब पे जहां तुम्हें कोई मौका मिले अल्लाह का एहसान समझते हुए फौरन वहां पहुंच जाओ और मोहरें साबित कर दो कि हम सब ये करेंगे, और इस रास्ते में जो मुसीबतें आए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुशियां मनाओ। सहाबा के ऊपर अगर कोई मुश्किल नहीं आती थी ना तो दुखी हो जाते थे, कहते थे हमारे रब ने हमें भुला दिए, हमें याद नहीं रखा, वावेले ना करो, शोर ना करो। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन को जब कांटा भी चुभता है, ये इससे भी कम तकलीफ, तो अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक गुना मिटा देता है। क्यों रोना, उस कदर वहां से मिलनी है। हदीस में आता है कि मोमिन को जब कोई थकन होती है या जिस्मानी दर्द लाहक होता है या कोई गम पेश आता है या कोई बीमारी पेश आती है या किसी बात का अंदेशा और खौफ, तो अल्लाह ताला इससे इसके गुनाहों को मिटा देते हैं। तिर्मिजी की रिवायत है। तो कौन नहीं चाहता कि ये हो? तो फिर अगर आपकी जिंदगी में कुछ गम है तो खुशियां मनाएं, आप दूसरों से ज्यादा खुश किस्मत है, क्योंकि कल अल्लाह ताला आपको ज्यादा उसके बदले में नवाजने वाला है। कोई बात शेयर कीजिए, क्या सीखा आज के सबक से? ऑनलाइन वाले भी लिखे और यहाँ वाले भी लिखे जी। कोई बन आपका सिस्टर नाम है, आपका नाम नहीं जी, क्या नाम है आपका जी? साजिदा, आप शेयर कीजिए प्लीज। दी, पीछे से आप नारीन आंटी, आपने क्या सीखा आज? और सबर सबर के साथ आता है। बाद लोग कहते हैं अल्लाह गिव मी पेशेंट बट सून, सबर सबर से आता है। आदत में अगर बेसब्री है ना तो फिक्र ना करें, एक वक्त आएगा कि आ जाएगा सबर। और सबर के बहुत मुख्तलिफ एंगल होते हैं। एक बहुत प्यारी रिवायत सामने आ गई हजरत अनस से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्राइल, उस शख्स की क्या जजा है जिसकी बेनाई को मैं सल्ब कर दूं, यानी अंधा कर दूं, आई साइट वीक हो जाती है बार दफा, और वो उस पर सब्र करे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तू पाक है, हमें सिर्फ इस चीज का इल्म है जो तूने हमें दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी जजा मेरे घर में हमेशा रहना है और मेरा दीदार करना है। बुखारी की रिवायत। आप पता है हजरत इब्ने अब्बास जिंदगी के आखिरी दिनों में नाबीना हो गए थे। तो अगर अल्लाह आपकी प्यारी चीजें ले लेता है तो आपको उसके बदले में उससे खूबसूरत चीजें भी दे देता है। एक और रिवायत सुन लीजिए, इमाम मालिक की, मोता में अबू सईद रावी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, जब मैं अपने बंदे को किसी मुसीबत में मुब्तला करता हूँ और वो इस पर सब्र करे और अपने इयादत करने वालों से मेरी शिकायत ना करे। इयादत समझते हैं ना, कि जो मुझे देखने आए उसकी उसके शिकवे ना करूं, तो मैं इसके गोश्त को बेहतर गोश्त से और इसके खून को बेहतर खून से बदल देता हूँ, और जब मैं इसको सेहतमंद करता हूँ तो इसका कोई गुना नहीं रहता, और अगर मैं इसको वफात दे देता हूँ तो वो मेरी रहमत की तरफ है। ये बुखारी की रिवायत है, ये मौता की, सॉरी। तो आप देखिए कि आप शिकवे ना करें तो बीमारी के बाद जब नया जिस्म मिलता है ना तो वो गुनाहों से पाक होता है। क्या दिल चाहता है जी, आप कुछ कहना चाह रहे जी? इधर से कोई और किसी को शिकवा के वो बहुत बीमार रहता है? शिकवे से मुराद के कोई है तो जिस्मानी बीमार रहता है? इधर बहुत सब चली गई, अल्लाह करे कभी वापस ना आए इंशाल्लाह जी। आप प्लीज खुशी का मतलब, खुशी का सफर सबसे मुश्किल है। ये उस दिन आपको समझ आएगा जिस दिन आपके घर में खुशादी आएगी, और जिस दिन आपको अल्लाह जिस्म दुबला देगा फिर दूसरों को दिखाएंगे। जिस्म बदला है कौन दिखाता है? कहता है चलो ऊपर बैठ कर हाल हो खुले चलो। जब जिस्म पतला होता है फिर बहाने बहाने से दिखाने को दिल जाता है। शक्ल जैसी तैसी है ठीक है कर लेते हैं काम, जब शक्ल अच्छी होती है फिर दिल जाता है दिखाएं अच्छे लग रहे हैं। तबरानी की एक रिवायत है हजरत इब्ने अब्बास से, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज दी गई जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई, और वो है मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। हम इन चीजों को छोटा समझते हैं लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है जी। बहुत सब्र है। हदीसें तो मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, दिल तो बहुत चाहता है कि आपसे शेयर करूं, मैं कर ही देती हूँ। ब्रेक का वक्त अब शुरू हो ही रहा है आपका। रिवायत है नबी सल्लम से, इकरमा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी का चिराग बुझ गया, बत्ती भी चली गई, जैसे बिजली चली जाती है अपनी जुबान में। तो आपने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपसे अर्ज किया गया, अल्लाह के नबी, क्या ये मुसीबत? यानी हम तो बड़े बड़े गमों पे पड़ते हैं, तो बिजली चली गई, चिराग बुझ गया, तो क्या ये मुसीबत है जिसपे आपने ये पढ़ा? तो आपने फरमाया, हाँ, हर वो चीज जो मोमिन को तकलीफ दे वो इसके लिए मुसीबत है और इसमें इसके लिए अजर है। इमाम इब्ने अबी दुनिया और बहकी अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत करते हैं कि जिस शख्स में चार खसलतें हों, लिख लें, चार आदतों, अल्लाह ताला जन्नत में इसका घर बना देता है। कौन सी चार आते? नंबर एक, जो ला इलाहा इल्लल्लाह से अपनी जान और माल की हिफाजत करे, यानी कलमा पढ़े, और जब इसको मुसीबत पहुंचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, और जब इसको कोई चीज दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जब कोई गुनाह करे तो अस्तग़फिरुल्लाह कहे। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से दुरूद और रहमत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस समझने को फायदा दे, यानी कलमा पढ़े, तकलीफ पे इन्ना लिल्लाह पढ़े, नेमत मिलने पे अल्हम्दुलिल्लाह, और गमों और दुखों पे सबर, गम और दुख, सॉरी, गुनाह हो जाए कोई तो उस पर अस्तग़फिरुल्लाह कहे। ठीक है जी। जी ये रिवायत किसकी है? जी बता देती हूँ आपको, जी ये किताब है, जी अभी बता रही, एक मिनट प्लीज। हाँ जी जी इब्ने अभी दुनिया और इमाम बहकी और अब्दुल्ला बिन अमर इसके रावी हैं। ठीक है, चले, कुछ रह गई बात हदीसें, वो फिर हुआ तो कल के डिस्कशन में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके वक्त में बरकत दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ब्रेक का वक्त है, आप लोग 20 मिनट की ब्रेक ले लीजिए और फिर इंशाल्लाह वापस मिलते हैं। वही करना, वही शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।